ओम शांति।
ओम शांति।
आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी के बीच ऐसी दो महान हस्तियां, हमारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के दो पिलर वरिष्ठ भाई हम सबके सम्मुख पधारे हैं। तो हम सभी तालियों से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आज बाबा ने जैसे तंदुरुस्ती की बात कही, तो आपका पूरा जीवन ही दूसरों को, आत्मा को भी तंदुरुस्त बनाने में और शरीर को तंदुरुस्त बनाने में, दोनों में ही अपना पूरा जीवन। मैं आप सबके सामने मैं आपकी क्या बातें कहूं कि आपने एक एक सेकेंड अपने जीवन का, एक एक श्वास दूसरों को सुख देने में अपना पूरा होम कर दिया। एक दधीचि ऋषि मिसल कहते भी है ना कि जमाने में यूं तो अनेकों जन्म लेती है जिंदगी, लेकिन जो औरों के लिए जिए उस जिंदगी को है बंदगी। तो दादियां जैसी हमारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन मानवता के लिए, हर आत्मा के लिए सफल किया, वैसे ही आप एग्जाम्पल दादियों को फॉलो की हुई हमारे सामने ऐसी महान आत्माएं जो अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करेंगी। मैं सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दूंगा। हमारे सामने डॉक्टर बनारसी भाई जी और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। डॉक्टर बनारसी भाई जी, आप जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो भगिनी संस्था है, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत जो मेडिकल विंग है, आप उनके सचिव हैं। और जो शांतिवन में हमारा एवरेल्दी हॉस्पिटल है, आप उसके डायरेक्टर निदेशक भी हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के आप ट्रस्टी कोषाध्यक्ष हैं। मेडिकल की विंग की सेवाओं ने तो कमाल किया पूरे भारत में। मैं तो दिल से इन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि माइंड बॉडी मेडिसिन, इतनी नेशनल स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो 50 से भी अधिक अभी तक आयोजित की गई हैं, जिसमें पूरे भारत से टॉप क्लास के स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए लोग आते थे और यहाँ 4 दिन रुककर कैसे अध्यात्म को स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाए वो सीख कर गए। और मेरा भारत स्वस्थ भारत, पूरे भारत में गांव गांव के लोगों को कैसे व्यसन मुक्त बनाएं, कैसे उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाएं, उसके लिए जो आपने कार्य किया वो बहुत सराहनीय है। बाबा भी बहुत खुश है आपसे, और दादी ने तो आपको जो जिम्मेवारी सौंपी वो आपने बहुत सफलता से उसे प्रैक्टिकल निभाया। और मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप हमारे वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप दिल्ली में बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, स्कार्ट हॉस्पिटल में आप वहाँ ये सेवाएं देते थे, लेकिन बाबा ने कुछ ऐसी अनुभूतियां आपको कराई कि आप 96 में आप आबू आए, वहाँ की सारी सर्विसेज छोड़ के, और आपने यहाँ बहुत सुंदर एक कैड प्रोजेक्ट, जो हार्ट के रोगियों के लिए वरदान, हजारों हार्ट के पेशेंट जिन्होंने नया जीवन पाया उससे, आपने 98 से वो कैड का प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया। और मैं ये इंटरव्यूज लेने का मुझे भी अवसर मिला, जब भी इनके कैट के प्रोजेक्ट होते थे तो मैं जाता था, तो वहां हर पेशेंट मैं देखता था, चाहे वो हार्ट का खुद भी डॉक्टर है लेकिन वो कैट प्रोजेक्ट में आया है, क्योंकि यहाँ मेडिटेशन से, डाइट से, एक्सरसाइज से कैसे सारी हार्ट की आर्टरीज ओपन होती हैं। तो सभी के मुख से यही निकलता था कि डॉक्टर सतीश गुप्ता भगवान है, भगवान है। मैं उनकी भावना देख के ही गदगद हो जाता था, माना कैसे संस्था से, उस माध्यम से लोगों को राजयोग मेडिटेशन से जोड़ना, क्योंकि जीना है तो आपको योग करना है, ऐसी इन्होंने एक विधि जो बाबा के द्वारा इनको टच हुई, तो बहुत सुंदर हम सबके बीच ऐसा सौभाग्य है। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर बनारसी भाई जी से अनुरोध करता हूँ कि आप दादी प्रकाशमणि, क्योंकि ये हमारा आज का इंटरव्यू एक जोड़ा गया है, सीमित किया गया दादियों से अनुभव के साथ में। भाई साहब, हमने आज बाबा ने जैसे कहा तंदुरुस्ती, तो हमने दादियों का 80 साल 90 साल से एक रस वो जीवन देखा है। दादियां आत्मा की तंदुरुस्ती का भाव ये है कि आत्मा थके नहीं, रुके नहीं, है ना, उमंग उत्साह उसका कम ना हो। तो दादियों का जो उमंग उत्साह हमने देखा, उनका अमृत वेले के प्रति हमने प्यार देखा, उनका मुरली के प्रति प्यार देखा, तो ये जो 90 साल तक एक रस उमंग उत्साह, न थकना न रुकना, कभी ऐसी हमने कभी ये देखा ही नहीं। मुझे याद है बहुत ठंडी माइनस, और पांडव भवन में मुन्नी बहन सब खड़े हैं, मोहिनी बहन, और दादी को कह रहे कि ओम शांति भवन नहीं जाना है मुरली सुनने के लिए, आप यहीं बैठो। दादी कहती नहीं भगवान बाबा आया हुआ है और मैं ना जाऊं, तो आखिर में मुन्नी बहन कहती आप जैसा स्टूडेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये कहां से उनके अंदर ये स्पिरिट आई, आप क्या अनुभव करते हैं उसके लिए?
ओम शांति। दादियों को बहुत नजदीक से देखा, दादियों को बाबा में बहुत अटूट क्या कहें निश्चय, और ब्रह्मा बाबा में भी उससे ज्यादा निश्चय। पहले तो एक क्यों निश्चय बढ़ा, क्योंकि जब भी ब्रह्मा बाबा को वो लोग देखते थे, आप लोग भी जीवन कहानी पढ़ा होगा, तो ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई देते थे, ब्रह्मा बाबा एंजिल दिखाई देते थे, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण दिखाई देते थे, ब्रह्मा बाबा श्री नारायण दिखाई देते थे। दादी बड़ी दादी जी का, दादी प्रकाशमणि जी का अनुभव है, वो फर्स्ट डे आई, बाबा ओम के ध्वनि लगा रहे थे और दादी आकर के बैठ गई और उस ओम की ध्वनि में ट्रांस में चली गई और वहां जाकर के गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण के साथ डांस कर रही है। ओम के ध्वनि पूरा हुआ, क्लास पूरा हुआ, सब लोग चले गए और दादी ट्रांस में है। थोड़ी देर के बाद ट्रांस से नीचे आए, देखा कि तो कोई नहीं है, खाली बाबा बैठा है। चुप से उठ के चली गई, कुछ बाबा से बात नहीं किया उन्होंने, क्या देखा न बाबा ने पूछा। और वो जो धुन लग गई वो कम नहीं हुआ। दादी बहुत अथॉरिटी से बोलती थी, एक बार यज्ञ में कदम रखा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, घर लौट के गई नहीं, इतना उनको निश्चय हो गया। उनका निश्चय था, उनको कोई पेपर नहीं आया, कारण उनका बाप जो फादर था, लौकिक पिताजी जो थे, ज्योतिषी थे। दादी का जन्म हुआ तो उन्होंने कुंडली देखा, उनका हाथ देखा, तो अपने वाइफ से माने दादी जी के मदर से उन्होंने कहा कि ये मीरा है, हमारे घर की नहीं है, ये मीरा है। तो उनकी भावना उसी समय से चेंज हो गई थी दादी के प्रति, ये मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी, नहीं ये मीरा है, कभी भी जा सकती है। और स्कूल की छुट्टियां हुई तो उनके फादर ने कहा, बाबा सत्संग कराते हैं, बेटी जाओ, उनके फादर ने भेजा। दादी को तो कुछ पता नहीं था, कन्या थी, छोटी उम्र था, तो छोटी उम्र में कहां बच्चे कहीं जाते हैं, माँ बाप को छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके और कहीं जाते नहीं है। तो उनके फादर ने भेजा, बेटा बाबा सत्संग कराते हैं, दादा सत्संग कराते हैं, वहां जाकर के सुना करो, जाओ। तो दादी को कोई बंधन नहीं, तो दादियां इतनी रॉयल फैमिली के 1936-35 में उनका बिजनेस कहां था, जापान सिंगापुर विदेश में बिजनेस था। अब आप सोच सकते हैं जिनका विदेश में बिजनेस हो उनका परिवार कैसा होगा, कितना धन्य धान्य संपन्न होगा, कितना भौतिक सुखों से संपन्न होगा। उस परिवार की ये हमारी दादियां, उस परिवार की ये बहनें निकली और बाबा के साथ उनका इतना स्नेह हो गया, कारण ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा उन्होंने। उस समय का बाबा कई बार कहते हैं कि साक्षात्कार का पार्ट जो शुरू में था वो फिर लास्ट में भी होगा। तो ये इतनी रॉयल परिवार से दादियां कन्याएं माताएं सबको छोड़ करके आ गई, किस कारण, बाबा की तपस्या के कारण, बाबा की में चेंज आने के कारण। क्योंकि सिंध एक छोटा सा ये था तो एक दूसरे को सभी जानते थे, तो बाबा के लोग जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। बाबा का बिजनेस विदेश में कलकत्ता में था, हीरे जवाहरात के मर्चेंट थे, आते थे तो कलकत्ता का मशहूर रसगुल्ला होता था और भी मिठाइयां होती थी, तो बड़े फराक दिल के थे, बड़े रॉयल रीति के उनका संस्कार था, तो बहुत सारी मिठाइयां लाते थे और अड़ोस पड़ोस सबको बांटते थे और वो लोग बहुत प्यार से लेते थे क्योंकि उनके लिए वो नई चीज थी। तो बाबा बहुत खर्चा नहीं देखते थे, पैसा नहीं देखते थे, बहुत सारा लाते थे और बांटते थे। तो उसके कारण और भी उनमें विशेषताएं थी कि सिंध में हर परिवार हर व्यक्ति बाबा को जानता था, बाबा में बहुत विश्वास था लोगों का, सिंधियों का। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और प्योरिटी की बात निकली तो धीरे 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 बाबा के ऑपोजिशन करना शुरू कर दिए। वो भी दिन देखा बाबा ने जो उनको दादा लेख राज बोलते थे, और वो भी दिन देखा कि बोलने वाले, इज्जत देने वाले, मान देने वाले गालियां भी निकाल करके गए, बहुत कुछ कह के गए। तो दादियों को निश्चय इसलिए बढ़ा कि बाबा की खुद की तपस्या बहुत गहन थी, उस तपस्या के कारण बाबा कभी साधारण दिखाई नहीं दिए और उनके सामने कभी साधारण रहे नहीं। साधारण मने बूट सूट वाले नहीं, सिंपल कुर्ता पजामा, लेकिन स्टेज वाइब्रेशन, उनकी वृत्ति। उन दिनों में दादियों को इतना कोई वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था। गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाती है, वहां जाकर के वतन में कृष्ण को देखा तो वो नीचे आकर के स्पष्ट नहीं कर पाती थी ये कृष्ण कौन है, वो देवता है कोई फरिश्ता है क्या है। तो वो अपनी माँ को बोलती थी, ऑलराउंडर दादी को, कि सिंधियों में उन दिनों में रिवाज था, आज भी रिवाज है कि अलमारी होती है उसमें कांच होता है, उसमें कृष्ण का या कोई फरिश्ता का फोटो चिपकाया हुआ होता है। तो बताती थी कि ऐसे ऐसे जो अलमा अपनी मिरर है वहां चिपकाया हुआ है, उस तरह से देखा। अभी कौन है क्या है उनको क्या पता है, छोटे बच्चों को इससे कोई लेनी देनी नहीं है। और वो भी रॉयल फैमिली के, गरीब फैमिली को, मीडियम फैमिली को हो तो माँ बाप मंदिर में ले जाएं तो फिर भी वो देख सकते हैं, और वो तो उन दिनों के बात ही और थी। तो मतलब कि बाबा में इतना परिवर्तन, इतनी बाबा की तपस्या कि वो दादियों को बाबा में भेद। तो इसी कारण इतनी उम्र में भी बाबा में जो उनका निश्चय था, इसलिए बेगरी पार्ट हुआ, खाने को नहीं मिला लेकिन बाबा को उन्होंने छोड़ा नहीं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, इतना निश्चय।
वो माना फाउंडेशन जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो उनके अंदर वो पड़ा, उन्होंने माना अंत तक कंटिन्यू उनमें वो शक्ति भरे
अंत तक। बाबा ऐसा नहीं कि फाउंडेशन में बहुत तपस्या किया बाद में ढीले हो गए, नहीं बाद में भी वही नशा था। बेगरी पार्ट है, 400 बच्चे हैं, खाने को चार आना पैसा नहीं है भंडारी में, और बाबा हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है। किसने देखा? दादी जी जानकी जी सुनाती थी हम लोगों को कि यज्ञ के नियम अनुसार दोपहर को लंच लेकर के सब लोग रेस्ट करने जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो थोड़ा घंटा रेस्ट करते हैं। सब लोग दोपहर को लंच लेकर के अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दादी जानकी, शुरू से उनका तपस्या का, पुरुषार्थ का लहर था, तो वो भोजन करके थोड़ा एकांत में बैठी थी। थोड़ा टाइम हो गया तो सोची कि थोड़ा हम भी जाकर के रेस्ट करके आए, 2 बज गया होगा 2:30 बज गया होगा। वो जा रही है अपने रूम में तो हिस्ट्री हॉल में देखते हैं कि लाइट जला हुआ है, आवाज आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि कोई पार्टी आई होगी, कोई समझा रहा होगा। तो थोड़ा गई अंदर देखने के लिए कौन समझा रहा है, कौन सी पार्टी है। तो दादी जब जैसे दरवाजे से ऐसे झांक करके देखती है तो बाबा का नजर पड़ा। बाबा बोलते हैं, बच्चे इधर आओ इधर। अरे बाबा तो कल श्री कृष्ण बनने वाला है, श्री नारायण बनने वाला है। अरे चार आना पैसा नहीं है उसकी उनको गम नहीं है, 400 बच्चे हैं उनकी चिंता नहीं है, नशे में है। लास्ट के दिनों में भी बाबा का पुरुषार्थ बहुत तेज था। ये सूक्ष्म वतन का पार्ट कब खुला? दादी गुलजार वतन में गई, लंबा तो नहीं होगा,
थोड़ा
ओके। तो कहने का भाव ये है कि इतना उनके बाबा का ये था कि दादियां कभी बाबा को साधारण देखा नहीं। ड्रेस उनका साधारण था, धोती कुर्ता बनियाई। कभी कभी बाबा थे, बुजुर्ग थे, कभी कोई फोटो आप देखे होंगे बाबा झूले पर बैठा है बनियाइन और धोती पहन करके बैठा है, लेकिन एकदम फरिश्ता। इसलिए अंत तक दादियों का बाबा में ये रहा कि नहीं, ये बाबा नहीं है, ये तो पहले उनको ही भगवान मानते थे। तो बड़ा बाबा मुरलियां चला चला करके, नहीं भगवान अलग है, बाबा अलग है, भगवान अलग है, वो आप लोग भी जानते हैं। तो इसलिए दादियों का इतना फेथ था।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, बहुत सुंदर। मैं ये चाहूंगा कि कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी उसमें जोड़ते जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सुंदर आपने काफी दिल को छूने वाली बातें बताई भाई साहब, थैंक यू। अभी मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से चाहूंगा कि बड़ी दादी का आपके कैट के प्रोजेक्ट के लिए बहुत स्नेह था, और दादी में परखने की शक्ति बड़ी तेज थी, उन्होंने आप जैसे हीरे को कैसे पहचाना, और बड़ी दादी ने आपके कैट के प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या प्रेरणाएं दी थी?
ओम शांति। मुझे याद आता है जब हम पहली बार, अब जब हार्ट का प्रोग्राम दिल्ली में ही बन गया था, मैं जब दिल्ली के एक बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में कार्य कर रहा था, तो उसमें हार्ट के पेशेंट्स हमारे पास आते थे, हम उनकी एंजियोप्लास्टी करते थे, बाईपास होके जाते थे, थोड़े दिनों में ही उनके बाईपास एंजियोप्लास्टी वापस बंद हो जाते थे। तो बंद हो जाती थी तो फिर वो पेशेंट्स कई बार मुझे बोलते थे, क्योंकि मिडिल क्लास में भी ना, जैसे लोअर मिडिल क्लास में भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, पहले तो रिच लोगों को होती थी सिर्फ, किंतु 93, 94, 95 में हार्ट के पेशेंट जो है मिडिल लोअर मिडिल क्लास में भी होनी शुरू हो गई थी। पहले तो 60-70 साल में होती थी, फिर 35 साल में, 36 साल में हार्ट अटैक आने शुरू हो गए। तो तभी मेरे को ऐसी प्रेरणा अंदर से हुई कि ये हम, और लोग मुझे कह देते थे डॉक्टर साहब, उस समय दिल्ली में एक MIG फ्लैट, समझते हैं MIG फ्लैट, 2 BHK होता है, 2 बेडरूम हॉल और किचन होता है ना, तो 2.5 लाख में आता था दिल्ली में, रोहिणी में, उस एरिया में। तो लोग उस समय 2.5 लाख रुपए लगते थे बाईपास कराने, एंजियोप्लास्टी कराने के, एक स्टेंट लगवाने के। तो हमारे पास आते थे तो हम लोग उनके बोलते भी, आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी तो जान का खतरा है। तो कई पेशेंट का पैसे नहीं होते थे, पर जान का खतरा सुन के वो लोग अपना घर ही बेच देते थे। एक पेशेंट ने ऐसा ही हुआ था कि वो, उसने अपना घर बेच दिया ओवरनाइट, उसकी पत्नी ने, और 3 महीने के बाद फिर उसको तकलीफ हो गई, एंजियोप्लास्टी करके चला गया। फिर दोबारा से आया तो मेरे को पेशेंट का, वो पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैंने कहा दोबारा से एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, आपके स्टेंट बंद हो गया और नए ब्लॉक भी आ गए, अभी 2 स्टेंट लगवाने पड़ेंगे या बाईपास कराना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा, डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं दोबारा से एंजियोप्लास्टी करा लो, 3 लाख जमा करा दो, या बाईपास कराना तो इतना जमा करा दो, तो मैंने तो घर बेच दिया, अभी तो घर बेच के एक तो हो गया, अब मैं क्या बेचूं। जब ऐसी उनके अंदर मैंने सुना तो मेरे को अंदर से बहुत फील हुआ कि भाई अगर किसी की, मतलब जिसके पैसे नहीं है उसको जीने का हक ही नहीं क्या, क्योंकि हम लोग तो समझते थे अगर एंजियोप्लास्टी नहीं कराएगा तो लोग ये मर जाएगा भाई, हमें तो इतना ही नॉलेज था ना, अगर आर्टरी बंद पड़ी है और उसको एंजियोप्लास्टी नहीं हुई तो मर जाएगा, बाईपास नहीं कराया तो मर जाएगा। तो हम लोग तो यही बोलते थे, हमारी इतनी समझ थी तब तक ना। तो फिर जो है मैंने तब देखा लोगों का भाई के लोग, उस समय से लिटरेचर में आ रहा था कि जो लोग गुस्सा करते हैं ना, आप में से कितना लोग गुस्सा करते हैं, ऐसे कोई जो गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, ऐसा कोई है?
बीच में
जो गुस्सा करते हैं, उसमें ऐसा लिटरेचर में, रिसर्च में आ रहा था, जर्नल्स में आ रहा था, जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। जो जल्दीबाजी करते हैं उनको 3 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के, जो उदास हो जाते हैं उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं आने के चांस होते हैं, जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, टेंशन को शेयर नहीं करते, उनको 3 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। इसलिए पहले लिखा भी रहता है ऑपरेशन थिएटर, आजकल नहीं लिखते हैं, तो पहले लिखा रहता है अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, ऐसा लिखा रहता था उस समय। तो उस समय जर्नल्स में ऐसी बातें आती थी, चिंता करते हैं उनको 2 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, जो अंदर से दूसरे के प्रति बदला लेने की भावना रखते हैं उनको ज्यादा लंबे लंबे ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो ऐसी बातें लिखी हुई आ रही थी, तो मैं फिर वो जर्नल्स पढ़ता था और मेडिटेशन मैं पहले से ही कर रहा था, राजयोग मेडिटेशन, तो मेरा स्वभाव भी बदला था उससे। तो मेरे को एक दिन ऐसी बाबा से सुबह सुबह अमृत वेले दिल्ली में ही वो हुई, क्या कहते हैं सुबह सुबह ना अमृत वेले हम बाबा से
टचिंग हुई,
क्या कहें उसको, विजन कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, क्योंकि बुद्धि में सारा दिन चलता था कि लोग इतने दुखी हैं, 35-36 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग तकलीफ में रहते हैं, तो क्या करें, इनका कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ये जर्नल्स मैंने पढ़ लिए, तब तक तो पढ़ लिए थे। तो मेरे को एक अमृत वेले सुबह सुबह बाबा से, बाबा ने साक्षात्कार कराया 27 फरवरी, आज 27 क्या है, आज 27 नवंबर नवंबर है 27 फरवरी की बात। तो बाबा ने सुबह सुबह अमृत वेले मुझे साक्षात्कार कराया, 26 को कराया, फिर 27 को कराया कि बच्चे ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, हार्ट की बीमारी होती है ना, इस कारण से होती है, ऐसे इस तरह से ब्लॉक होते हैं, और अगर कोई राजयोग का मेडिटेशन करे ना तो इससे ये ब्लॉक ऐसे खुल जाते हैं। 26 को कराया, 27 को कराया, 95 में कराया। तो फिर मेरे को, मैं घर पे जब आया, अमृत वेला देखा, फिर मुरली सुनने गया, मुरली सुन के घर आया, घर आते ही फोन आया मेरे पास ना घर में, लैंडलाइन में फोन, उसमें लैंडलाइन मोबाइल तो उस समय होते नहीं थे, तो उस पर आया कि एक सेंटर से फोन आया कि डॉक्टर साहब आपको हमारे यहाँ, हमारे एरिया के डॉक्टर्स हैं ना जो आपको, आपसे मिलना चाहते हैं, आप जो बोलते हैं ना स्ट्रेस के ऊपर, तनाव से हार्ट की बीमारी कैसे होती है, हमारे हार्ट अटैक क्यों, हार्ट अटैक कैसे तनाव से आते, टेंशन से, मैं ज्यादा उसी पे बोला करता था, डॉक्टर से गैदरिंग भाषण करता था। तो उसने कहा कि आपको उस पे लोग, मैंने कहा बहन जी दीदी मेरे पास टाइम नहीं बोलने का, मेरे पास आने का, मैं तो अस्पताल में बिजी रहता हूँ, सुबह जाता हूँ 7:30 बजे निकलता हूँ, 1.5 घंटे का रास्ता था स्कॉट्स जाने का, तो 1.5 घंटा जाने में लगता है और फिर शाम को 6 बजे फ्री होता हूँ, 7:30 बजे घर आता हूँ, तो मैं तो नहीं आऊंगा, किसी और को बुला लेना, दिल्ली में और डॉक्टर को बुला लेना, तो मैं नहीं आऊंगा। और अल्टीमेटली ये हुआ क्या कि सैटरडे का दिन था, तो कहा 3 बजे आपको आना है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, हुज्जत से उसने कहा, दीदी ने, हमारी पुरानी दीदी थी 68 से हमारे घर में गीता पाठशाला उन्होंने खोली थी, हमारे माता पिता ज्ञान में बचपन से, मैं नहीं था ज्ञान में मतलब, पर हमारा पहले से 68 से ही हमारा सेंटरों में आना जाना और दादियों से मिलना जुलना बचपन से ही था, सभी प्रोग्राम से माता पिता से जाते आते थे, तो उन्हें ऐसा बोल दिया। तो फिर जो है मैं पहुंचा 4 बजे, तभी बहन जी अनाउंस कर रहे थे कि आपको अभी डॉक्टर गुप्ता तो आए नहीं, अभी आप थोड़ा सा ये 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद फिर आपको थोड़ा नाश्ता आपके लिए रखा है, फिर आप खा के चले जाना, क्या करें डॉक्टर गुप्ता तो बिजी हो गए होंगे हॉस्पिटल में तो नहीं आ पाए, तभी मेरे को देखा तो कहते डॉक्टर गुप्ता आ गए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो मैंने 45 मिनट लगभग जब मैं वहां जाके बैठा स्टेज पे, और जो 45 मिनट मैंने बोला बिना स्लाइड के बोला, कोई स्लाइड नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं, मतलब नॉर्मली तो आप होश में बोलते हैं ना कि क्या बोल रहा हूं। 45 मिनट मैं गाड़ी चला के आया था, 1.5 घंटा तो गाड़ी चला के आया था, कार चला के आया था, और मैंने जो 45 मिनट बोला है वो मुझे नहीं पता क्या बोला। फिर मेरे को सभी लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर गुप्ता आप जो ये बोल रहे थे ऐसा हो सकता है क्या, मैंने कहा जो बोला है तो हो ही सकता होगा, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फिर सब डॉक्टर क्वेश्चन पूछने के बाद चले गए, एक डॉक्टर रुक गया, वो DRDO से था, DRDO समझते ना, जहां मिसाइल बनते हैं, बॉम्ब्स बनते हैं, वहां का डॉक्टर था, कहते डॉक्टर गुप्ता ये आपने कहा सचमुच में हो सकता है क्या, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, कहते आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप ना हमारे डॉक्टर कलाम साहब ना उसके चीफ है ना DRDO के, तो आप उनसे मिलेंगे, तो मैंने कहा जरूर मिलेंगे, तो मंडे का दिन का सैटरडे का लेक्चर था, तो मंडे को उसने कहा कि आप जो है 9 मार्च को, उन्होंने कहा कि 9 मार्च को आपको हम लोग, मेरे को मैसेज आया, मंडे को मैसेज आया कैसे से आपको डॉक्टर कलाम से ट्यूसडे को मुझे मिलने के लिए। 6 मार्च को मेरा वो था लेक्चर दिया, 7 को संडे, 8 को मिला, 8 को उनसे फोन आया, 9 को मैं उनसे डॉक्टर कलाम साहब से मिला। तो डॉक्टर कलाम साहब ने पूछा कैसे कि आप क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा आप इनसे पूछिए क्या बात कर रहे थे क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था क्या बात कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर गुप्ता ऐसे से बोल रहे थे, ऐसे से होता है, ऐसे से हो सकता है। उन्होंने कहा आप ये रिसर्च करेंगे, मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा। तो कहता अगर आप ये रिसर्च करेंगे तो मैं आपके साथ हूं, मेरा पूरा DRDO आपके साथ है। उसमें तो DRDO तो गवर्नमेंट की बॉडी थी, वो तो प्राइवेट कंसल्टेंट था, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में था। तो मतलब ये मैं आपको विशेष रूप में कहना चाहता हूं कि परमात्मा का बनाया हुआ प्रोग्राम था, मुझे भी कोई पता नहीं था और परमात्मा ने बुलवाया था, और क्या बोला था मुझे भी पता, आज तक नहीं पता मैंने क्या बोला था। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर आप ये करेंगे तो मैं आपके साथ हूं, मेरा DRDO आपके साथ है। बोलो डॉक्टर कलाम साहब DRDO के डायरेक्टर जनरल थे और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, तो सचमुच में रिसर्च प्रोग्राम बना, और रिसर्च प्रोग्राम बनने के बाद मैंने प्रताप भाई को फोन किया दिल्ली से, मैंने कहा मां ग्लोबल का नाम भी डाल दो क्या, डाल दो। तो एस्कॉर्ट और दिल्ली का वो उसका DRDO और यहाँ का दिल्ली का एम्स और ये वाला हॉस्पिटल का नाम डाल दिया, और डाल करके और हमने रिसर्च का प्रोग्राम गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया डॉक्टर कलाम साहब से बात करके। और फिर मेरे को लगन सुबह सुबह हमने दिल्ली रोज बाबा बोले बच्चे तेरे को छोड़ना है, दिल्ली छोड़नी, दिल्ली छोड़नी। अब मैं क्या करूं दिल्ली छोड़नी, मैं तो दिल्ली में सेटल था, बड़े अस्पतालों में मेरा कनेक्शन था, सब जगह आना जाना था। तो बाबा मुझे रोज अमृत वेले के दिल्ली छोड़नी है, दिल्ली छोड़नी है। तो एक दिन प्रताप भाई का फोन आया, निर्भय भाई भी फोन पे थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आप आ जाओ यहाँ, शायद कोई हार्ट का पेशेंट रास्ते में जाते जाते मेरे डेथ हो गई थी ना अहमदाबाद जाते हुए, तो आप यहाँ पर आ जाओ। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो आने की कोई इच्छा है तो नहीं है, किंतु मेरे को एक रिसर्च प्रोग्राम बना है, ऐसे मेरे को रिसर्च करने के लिए आ सकता हूँ। कहते ठीक है आ जाओ, रिसर्च तो हो ही जाएगी, हम आपको जो भी मदद कर सकते हैं करेंगे, आप आ जाओ। तो मुझे 9 मार्च को डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिला हूं। आप सोचिए ये परमात्म प्रेरणा क्या होती है, मैं सब कुछ दिल्ली में खत्म करके सब छोड़ के अस्पताल 15 अप्रैल को यहां पर माउंट आबू में परिवार के साथ पहुंच गया, और 11 अप्रैल तक मेरे पिताजी को स्ट्रोक हुआ था, स्ट्रोक समझते हैं लकवा, आधा बॉडी में ना पैरालाइज हो गया, तो उनका इलाज मैं ही करता था घर पे। तो पिताजी को मैंने 11 अप्रैल, मैं डरता था पिताजी से बहुत कि पिताजी कहेंगे देखो एक तो ये मतलब जो है मैं बीमार पड़ा हूं, कहता मैं माउंट आबू जाता। तो मेरे पिताजी को मैंने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रोटोकॉल दी थी जो गवर्नमेंट को दी थी, मैंने ऐसे दिखाई 11 अप्रैल को डरते डरते। तो पिताजी ने देखी, वो तो लेटे हुए थे, तो देख के कहते बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो इससे तो लाखों लोगों की सेवा हो जाएगी, लाखों लोगों को फायदा होगा, तो तुम्हारे तुम ना ये रिसर्च करने के लिए ना तुम माउंट आबू चले जाओ। तो मैंने तो मतलब मेरे को तो मरना ही है, मेरे को तो शरीर छोड़ना ही है 15 दिन में, एक महीने में 2 महीने में 6 महीने में शरीर छोड़ना ही है, तुम चले जाओ माउंट आबू। मुझे पता तुम मुझे नहीं कहोगे किंतु मैं तुम्हें कहता हूं तुम चले जाओ। तो मेरे पिताजी ने 11 तारीख को मुझे कहा, 11 अप्रैल को, और मैंने फिर तुरंत 11 अप्रैल को ही ट्रक किया, ट्रक में सामान लोड करने के लिए ट्रक किया, अपनी कार को मतलब सामान कार में रखवा के 14 को और ट्रेन की टिकट कराई और 15 को यहां पहुंच गया। तो बताइए परमात्मा प्रेरणा क्या होती है, परमात्मा कैसे कार्य कराता है। और 5वें दिन दादी ने मुझे बुलाया और बुला के कहा गुप्ता जी आप बाबा के घर में, हम तीनों को, मेरे युगल और हमारा बेटा था 2 साल का, मतलब उस समय तो 9 साल का था, तो कहते आपको आप बाबा के घर के हो, आप बाबा के घर में ही, आपको अस्पताल में तो आप भले सेवा कर रहे हो कि तो बाबा घर में हो, आपको बाजार से कुछ खरीदना नहीं, कुछ करना नहीं, आपको बाबा घर में ही सब कुछ लेना है, बाबा के घर में ही रहना है। तो दादी की ये प्रेरणा मतलब वंडरफुल प्रेरणा थी दादी की। दादी ने आते ही जैसे ना उनको ये तो पता था कि प्रोग्राम हार्ट का प्रोग्राम है, पर मतलब घर की जो पालना, घर की जो भाषणा होती है ना, वो दादी ने तुरंत दे दी हमको कि हमें दिल्ली भूल जाए। तो दादी ने ऐसे हमको दिल्ली भुलवा दी एकदम से। फिर तो बात उसके बाद तो बहुत सारी बातें।
कैट का तो दादी ने आपको क्या प्रेरणा दी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई?
दादी ने, मुझे याद है जब प्रोग्राम पास हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास हो गया, तो मुझे बल्कि उसके पहले क्या था, मुझे उसके पहले क्या हुआ था, मैं कोई हार्ट का पेशेंट नहीं था, आपको शायद पता होगा, मेरे को भी हार्ट का पेशेंट बन गया मैंने
उस समय।
तो अप्रैल 95 में आज शिफ्ट किया, तो मुझे अचानक नवंबर 96 में मुझे हार्ट की बीमारी हो गई। मैं लॉन टेनिस खेला करता था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, अच्छा प्लेयर था, कॉलेज लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था अपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को। तो मेरे को तो हार्ट के, मैं इवन ऊपर माउंट आबू आके सीआरपीएफ में मैं लॉन टेनिस खेलने जाता था, क्रिकेट खेलता था माउंट आबू आके भी, अचानक हार्ट की समस्या 36-37 साल की उम्र में मुझे हार्ट की समस्या हो गई, सिर्फ 37 ईयर्स में अचानक एंजाइना हुआ, तकलीफ हुई और ईसीजी बहुत खराब हुआ। तो फिर बाद में फरवरी 97 मेरा डायग्नोज हुआ कि मुझे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, मेरी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी मोटी हो गई थी और हार्ट का ऑल्टा रुक गया था। तो मुझे क्या हुआ कि मैं रात को सो नहीं पाता था, मुझे बहुत एंजाइना होता था, बहुत हर धड़कन में मुझे दर्द होता था और मेरे को एरिदमिया समझते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, मेरी हार्ट बीट चली जाती बीच बीच में और मुझे बहुत जोर से तकलीफ होती थी, मैं लग रहा था बहुत जोर से चक्कर आते थे, जैसे अर्थक्वेक आता ना ऐसा होता था अंदर से। तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं दादी के पास गया, तो बड़ी दादी जी के पास, तो बड़ी, मैंने कहा दादी ऐसे है, डॉक्टर ने कहा है तो इसका तो आप मुश्किल से 2 साल, डॉक्टर ने मुझे कहा मेरे यूएस के फ्रेंड ने कि आप मुश्किल से 2 साल जिंदा रहोगे, फरवरी 97 की बात है, आप मुश्किल से 2 साल जिंदा रहोगे, अभी आपका आप अपना वाइंड अप कर लो, घर वालों को सब बता दो और ऐसे चुपचाप कर लो, आप कभी भी डेथ मेरी मेरे उसका उसके मेरे प्रैक्टिस में 2 साल से जिंदा कोई रहा नहीं है, मैं 2 साल के अंदर तो सब मर जाते हैं ये बीमारी से, बीमारी बहुत देर है कि तो इसमें सब मर जाते हैं। अभी पता है आपको 97 से मेरी अभी कितने साल हो गए, जिंदा हूं ना मैं। तो मुझे जो है, मैंने फिर दादी को बताया, दादी ऐसे से वो डॉक्टर बोलते हैं, ऐसे मुझे सारी रात बहुत तकलीफ होती है और ऐसे दिन में भी होती है। तो दादी ने कहा, दादी गुलजार दादी पास साथ में बैठी थी, तो उसने कहा दादी को, दादी जी को कहा कि भाई आप जो है बाबा से पूछ के आओ क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बच्चे इसमें कोई ऑपरेशन कराने की बात नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल पंप लगवाने की, ना एक पेसमेकर होता है वो कार्डिक शॉक देने का, अंदर अंदर शॉक देता है मशीन, वो लगवाने की बात नहीं, ये तो बाबा ने बच्चे को अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए ये बीमारी आई है ना, अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए बीमारी आई है और खूब इसके लिए योग का प्रयोग करो और ठीक हो जाएगा। तो मैंने खूब योग का प्रयोग करना शुरू किया, वो जैसे मेडिटेशन करते ना आप लोग सब, मैंने भी शुरू कर दिया, सारा दिन मेडिटेशन, रात को तो करनी पड़ती, रात को नींद नहीं आती तो सारी रात मेडिटेशन करता था। 1 महीने तक मुझे कुछ ठीक नहीं हुआ, वैसी दर्द वैसी तकलीफ होती थी। फिर मैं दादी के पास पारा कि दादी मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैं तो लगता कभी भी आज मुझे देख रहे हो कल शायद मैं नहीं होऊंगा। दादी कहती तो हो ही नहीं सकता, बाबा ने आपको ये बीमारी अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए दी, तो ये तो बाबा की गिफ्ट है आपको। मैंने कहा अच्छा मेरा जीना मुश्किल हो गया ये, तो कहते आपके तो गिफ्ट है। तो फिर बाबा से दोबारा मैसेज मंगाया गया, तो बाबा ने कहा बच्चे जो आप मेडिटेशन करते ऐसे मेडिटेशन नहीं होता है, क्योंकि हम तो विजुलाइज करते थे, मैं सूक्ष्म शरीर निकल रहा हूं और परम धाम सूक्ष्म अंतर में जा रहा हूं, बाबा की गोद में जा रहा हूं, बाबा मेरे हार्ट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मैं करता था रोज ऐसे करता था। तो बाबा ने कहा बच्चे जो बाबा की साकार मुरली है ना 6-5 साल की और अव्यक्त मुरली, रोज की साकार मुरली अव्यक्त मुरली, वो 69 से लेकर 97 तक की मुरलियां आज ही खरीदे, बच्चे को बोलो आज ही मुरलियां खरीदे और एक एक लाइन को रिवाइज करे बार बार और एक एक लाइन को महसूस करे, रिवाइज करे रियलाइज करे, रिवाइज करे रियलाइज करे, एक एक लाइन को एक एक महावाक्य को महसूस करे और उस वो शुरू करो। तो मैंने तभी 69 से लेकर 97 तक की मूल्यां खरीद ली, उस तारीख तक की फरवरी मार्च में का महीना हो गया था, मैंने खरीद ली और मैं जाके ये शुरू किया। अंडरलाइन देखो मेरी तो मुरली भी देखो ना अभी तक अंडरलाइन रहती है, कोई लोग तो एक एक लाइन कोई लाइन अंडरलाइन में तो सारी लाइन अंडरलाइन हो जाती है देखो ना, है ना, मेरे को कोई लाइन लगती नहीं कहीं अनइम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे एक एक लाइन को पढ़ना और बाबा को लेटर, बाबा ने कहा लेटर लिख लिख के बाबा को दो सारी बचपन से लेकर सारी बातें, तो मैं लेटर लिखता था बाबा को, मेरे मन में सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बचपन से लेकर क्या क्या भरी हुई थी लिख के दे, लिख के साइन करना, बाबा को देना, फाड़ के डस्टबिन में डाल देना। फिर 10-10 बार मैं लिखता था और फिर मुरलियां पढ़ते रहना, एक एक लाइन को महसूस करना, रिवाइज करना, रिलाइज माना महसूस करना कि बाबा मुझे कह रहा है, बाबा मुझे कह रहा है। तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं बहुत बढ़िया, मेरा योग हो गया और मेरी बीमारी खत्म होने लग गई, व्यवहार मेरा बदल गया। मैं बहुत जल्दीबाजी वाला व्यक्ति था, टाइप ए नेचर वाला, एंजाइटी वाला, अंदर अंदर इरिटेट हो जाता था, सेंसिटिव था, इमोशनल बहुत था, अपने मन की बात एक बताता नहीं था, शेयर नहीं करता था। तो एक तो शेयर करना सीख गया, जल्दीबाजी खत्म कर दी, चिंता खत्म कर दी, अंदर का गुस्सा भी खत्म कर लिया, बाहर गुस्सा कभी नहीं किया था मैंने, तो अंदर का गुस्सा भी खत्म हो गया और धीरे धीरे मेरे अंदर से परिवर्तन आना शुरू हो गया और इधर मेरा एंजाइना खत्म होना शुरू हो गया, हार्ट बीट रेगुलर होनी शुरू हुई। फरवरी में कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, फिर 9 सितंबर में फिर कॉन्फ्रेंस थी, मैं ठीक हो चुका था बिल्कुल। फिर वो डॉक्टर दोबारा दिल्ली में आए थे अमेरिका से, उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता लुकिंग वेरी नाइस, आपको तो बहुत चेहरे आप चमक रहे हो, आपने क्या ऑपरेशन करा लिया क्या? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं कराया। कहते देखो लेट मी सी योर हार्ट, तो देखा तो उसका मेरा हार्ट की दीवारें जो 21 मिलीमीटर मोटी हो गई थी, नॉर्मली 10 मिलीमीटर होती है, डबल से भी ज्यादा हो गई थी, वो नॉर्मल हो गई थी।
वेरी गुड।
हार्ट की पंपिंग 90% हो गई थी, हार्ट की पंपिंग जो है वो 65% नॉर्मल होती है, वो ही हो गई। और जो हार्ट की जो मतलब नॉर्मल हो गई, और जो मेरे ब्लॉकेज थे ना जो, वो 96 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ग्रेडियंट बन गया था, वो नॉर्मल हो गया, 12 मिलीमीटर हो गया। तो कहते ये कैसे हो गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने तो कहा मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करना माना, वो कहते भाई पागल है क्या बात करता है मेडिटेशन,
अनुभव की अथॉरिटी।
तो बाबा ने मतलब मुझे ये बना दिया कि सचमुच राजयोग से क्या हो सकता है, राजयोग से मेरा स्वभाव तो बदला ही, किंतु मेरे अंदर जो बीमारी थी ना फिजिकल, क्योंकि मैं भी खुद सोचता था कैसे कैसे ठीक हो सकती है, किंतु मेरे अंदर मैं रिसर्च प्रोग्राम तो बन गया था, किंतु मैं खुद सोचता नहीं था कि ब्लॉकेज खुल भी सकते हैं किसी के, किंतु मेरी बीमारी इतनी कम हो गई, लगभग नॉर्मल हो गई। तो ये फिर दादी को जब मैंने रिपोर्ट दिखाई तो दादी कहती अब तुम्हारा प्रोग्राम के तुम लायक बन गए हो ना, अब ये रिसर्च प्रोग्राम के तुम लायक बने हो, नहीं तो अभी तक तुम इसके लायक नहीं थे। तो ये जो है दादी ने जैसे प्रेरणा दी के नीच, दादी के साथ रही ना हर बात में, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं अभी छोड़ के दिल्ली चला जाऊं, क्योंकि दिल्ली वाले मुझे कहते हैं आप वापस आ जाओ, है ना। तो कितने दादी ने कहा नहीं गुप्ता जी आपको कहीं नहीं जाना है, जीना मरना है सब, एक बार घर आ गए ना बाबा के घर तो जीना मरना यही है आपका, और आपको डरने की जरा भी बात नहीं, बाबा आपके साथ है, परिवार आपके साथ है। तो दादी का अपनापन, अपनेपन की फीलिंग कि हम बाबा के हैं, बाबा के घर के हैं, तो दादी की मतलब अपना बना लेने की कला, कहते ना अपना बना लेने की कला दादी के अंदर थी, और जिसने हमको
थैंक यू।
बनारसी भाई तो इसके साक्षी हैं, कई बार मैं आपके साथ अहमदाबाद भी गया, बॉम्बे भी गए, और आज भी ये बीमारी मेरे लिए वरदान है हार्ट के, आज भी वरदान, क्योंकि अजरा भी आज भी मैं थोड़ी गलती करूं ना, थोड़ी जल्दीबाजी, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम आज भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट तो वही है कि, तो ये मेरे लिए वरदान है बीमारी, क्योंकि मेरे को इस बीमारी ने इंसान बनाया, पक्का ब्रह्मा कुमार बनाया, पक्का राजयोगी बनाया, और बाबा से बात करनी सिखलाई इस बीमारी ने। क्योंकि अब किससे पूछूं, शुरू शुरू में तो दादी गुलजार दादी अवेलेबल होती थी, बार बार मैसेज मंगा लेते थे, फिर मेरे को बात कैसे करें, पेशेंट्स के बारे में कुछ पूछना कैसे करें। तो सूक्ष्म वतन का अनुभव, रियल सूक्ष्म वतन क्या होता है, सारा कुछ बाबा ने इसके द्वारा अनुभव कराया। तो ये बीमारी एक वरदान है, इसलिए आप भी कभी किसी को आप कुछ हो जाए ना, तो इसको कभी बीमारी नहीं समझना, कोई बीमारी भी हो जाए वो आपके लिए वरदान है, सचमुच अगर सही ढंग से करो तो। जो बाबा ने तंदुरुस्ती कहा ना, कोई ना कोई विकारी कारण होता है, उनका बाल बच्चा कारण होता है ना, तो वो विकार निकल गया तो बीमारी निकल जाती है।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। मेरा अगला प्रश्न भाई साहब से है, डॉक्टर बनारसी भाई जी से। भाई साहब आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन से यज्ञ के जुड़े हैं गहराई से, और बड़ी दादी को आपने 69 से, जैसे दादी का पार्ट रहा 2060 तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, तो बाबा ने जो उनके हाथों में ये जिम्मेवारी यज्ञ की सौंपी दादी प्रकाशमणि जी के हाथों में, तो आप दादी के एडमिनिस्ट्रेशन को किन खूबियों के आप समझते, किन खूबियों के कारण बाबा ने इन्हें ये सौंपा होगा ये पूरा यज्ञ का कार्यभार, आपने बड़ी दादी में ये क्या देखा एडमिनिस्ट्रेशन, व्यक्तिगत अनुभव आप सुनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा सभी को।
ओम शांति। दादी शुरू से यज्ञ में आई तब से उनका जो पुरुषार्थ था ना, बाबा उससे बहुत खुश था। जैसे जन्म परिवार में कोई बच्चा आता है बुद्धिजीवी होता है तो वो सारा परिवार खुश होता है कि बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसी तरह बहुत सारे भाई बहने, 400 भाई बहने आए, लेकिन दादी उसमें बहुत टैलेंट थी और बहुत आज्ञाकारी थी, बहुत हर बात में परफेक्ट थी, तो बाबा की नजर थी। दीदी बहुत रॉयल फैमिली की थी, संस्कार उनका बहुत रॉयल था, तो दोनों को जोड़ी था शुरू से। जब दोनों दीदी और दादी, तो बाद में दीदी दादी नाम पड़ा, वो तो छोटे छोटे थे, तो बाबा देख करके ये जोड़ी बहुत खुश होता था। तो बाबा दादी के टैलेंट को देख करके, कोई भी जवाबदारी बाबा साकार बाबा होते थे तो बहुत सारी यज्ञ में कारोबार होता था, दादी को देते थे, एक्यूरेट दादी करके देती थी। तो साकार बाबा दादी को सेवा में ही बाहर भेजते थे, दीदी को भी दिल्ली में दीदी रहती थी, दादी बॉम्बे और सेवा में रहती थी। जब मम्मा चली गई, अव्यक्त हो गई, तो मम्मा के जगह पर बाबा ने दीदी को बुला लिया, क्योंकि दीदी में एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत तेज था। दीदी थी मन पत्ता नहीं हिलेगा, इतनी कड़क, गलती होगी शाम को आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अभी बुलाओ सड करो। दीदी हिंदी कम जानती थी तो सिंधी बोलती, सड कर तुरंत बुलाती थी, बुला करके फैसला, रियलिटी को जानती, जानना चाहती थी, जान करके तुरंत फैसला करती थी, बहुत ये नहीं करती थी। तो दीदी कहीं से गुजरती थी तो सब डरते थे, दीदी आ रही है, चुप, सन्नाटा। दीदी क्लास में गई, भागते थे हम लोग, दीदी क्लास में चली गई है, तो दीदी का मतलब कि पावर। तो दादी में शुरू से, तो दादी को बाबा ने बाहर सेवा पर भेजा, क्योंकि लेक्चर करने का और एडमिनिस्ट्रेशन का दादी में शुरू से पावर था। देखिए कैसे विधि का विधान है। अब दीदी बाबा से बहुत बहुत माने बहुत नजदीक, दीदी का लौकिक नाम गोपी था, अलौकिक नाम मनमोहिनी दीदी था, तो गोपी एकदम गोपी थी। तो जब बाबा को अव्यक्त होना था, बाबा को तो पता था, तो दीदी को बाबा ने इलाहाबाद कुंभ मेले में भेज दिया, दीदी आप कुंभ मेला हो रहा वहां जाओ, संतों की सेवा करो, बाबा कहे और कोई ना कहे, हाँ बाबा जा रहे हैं, चली गई। दादी पार्टी लेकर के आई, दो दिन पार्टी रही, पार्टी चली गई, तो दादी बाबा के पास गई कि बाबा पार्टी चली गई तो मैं जाऊं, तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बच्ची अगर बॉम्बे में बहुत जरूरी काम नहीं है तो ठहरो, रुको। कभी दादी को एक दो दिन से ज्यादा बाबा मधुबन में रहने नहीं देता था। वो पहला दादी का दिन था कि बाबा कहे, बाबा ने कहा कि दादी आप बच्ची आप रुको, ये 16 तारीख की बात है, 17 की बाबा का तबीयत खराब होती है और फिर 18 तारीख को दादी ने कहा कि बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा रेस्ट करो, जा करके हम मुरली सुना देते हैं, आपकी जो लिखत है वो मैं पढ़ करके सुना देती हूँ। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची। दादी जा करके सुबह 18 तारीख को क्लास करा दिया, क्योंकि मॉर्निंग क्लास तो अपना पंक्चुअल है, वो मिस नहीं हो सकती है। क्लास करा दिया, क्लास करा करके आई तो नाश्ता करके आई दादी, तो बाबा ने दादी का हाथ पकड़ करके सारा चीज दिखाया। अब दादी हैरान हो रही है कि मुझे मधुबन में रहना नहीं है, ये कपड़े का स्टोर है, अनाज का स्टोर है, दाल चावल का स्टोर है, चीनी का स्टोर है, ये गिफ्ट का स्टोर है, बाबा मुझे क्यों दिखा रहा है? लेकिन दादी कुछ बोल नहीं सकती है, बाबा दिखा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी घुमा रहा है। दादी बोलती है बाबा देख लेंगे ना, आते नहीं बची, चलो बाबा साथ में चलता है। पीछे पीछे दादी ने सब कुछ देखा। शाम के टाइम में बाबा ने कहा कि आज सुबह बाबा मुरली नहीं चलाया है तो बच्चों के संकल्प चलेगा, इसलिए सबको बोलो कि जल्दी ना भोजन कर लें और बाबा आज जल्दी क्लास में आएगा। दादी को बुला करके बोला और दादी ने अनाउंसमेंट कर दिया। पहले अनाउंसमेंट कैसे होता था, अभी भी देखेंगे वो झाड़ में एक घंट, क्या बोलते हैं मंदिर में जो घंटा बजता है ना, तो घंटा लगा हुआ अभी भी वो यादगार है, शायद उतार दिए होंगे। तो घंटा दादी बजा करके सबको बोली कि बाबा ने कहा है जल्दी आप लोग भोजन करो और आ जाओ। सब जल्दी जल्दी भोजन करके हिस्ट्री हॉल में आ गए। बाबा आए, मुरली चलाया और मुरली चला करके उस दिन बाबा विदाई लेता है। देखो कितना ईश्वरीय राज, मुरली चला करके बाबा, जैसे हम दरवाजे से निकलते हैं तो मुंह उधर रहता है, पीठ करके निकल जाते हैं, बाबा कभी ऐसे नहीं करता था। बाबा पीछे, जैसे पीछे चलते हैं तो पीछे होकर के चलता था पीछे, और बच्चों को दरवाजे से अच्छा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बच्चे बनना है, और बाबा विदाई लेता है। हाथ हाथ नहीं जोड़े, मैं तो अपने तरफ से हाथ जोड़ता हूं, बाबा विदाई लेता है झुक करके। तो बच्चे समझे नहीं कि बाबा विदाई लेता है, बाबा बोलता रहता है ठीक है दादी। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो छोड़ने गई सब, और भी दो चार दादियां थी, तो बाबा अपने चरपाई पर बैठ गया और दृष्टि बाबा तो देते ही थे, तो दृष्टि देने लगा। दादी सामने थी, दादी का हाथ अपने हाथ में लेकर के दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गया। अब सारा पावर बाबा ने हैंड ओवर दादी को कर दिया और रियली बाबा चला जाए कितनी बड़ी बात होगी, कितनी हलचल हो जाए। लेकिन दादी को इतना पावर दिया कि दादी हलचल में नहीं आई, बड़ा स्ट्रांग होकर के, जो अगर कोई आंसू बहाया उनको भी बोली कि नहीं बाबा के पास आंसू नहीं बहा सकते। और आज तो हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, फोन कर दो एक मिनट में, व्हाट्सएप कर दो, फलाना मैसेज कर दो, फैल जाता है दुनिया में। उन दिनों में यज्ञ में दो ही फोन था, एक ईशु दादी का ऑफिस में, एक निर्भय भाई का ऑफिस में, दो फोन था। यज्ञ का कारोबार दो फोन से चलता था। दादी ईशु दादी का ऑफिस में बैठ गई और सबको फोन किया, जगदीश भाई को, बड़े बड़ों को, तो सभी यही कहे कि दादी आप बॉम्बे से बात करती हो? अत नहीं, मैं मधुबन से। आप मधुबन कब आई? अत तो पार्टी लेकर के आई थी, बाबा ने रोक लिया। देखो दादी सबको, कईयों को तो विश्वास ना हो कि ये बॉम्बे से मजाक कर रही है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, सत्य है, बाबा अव्यक्त हो गया, आप जल्दी आ जाओ। बस इतना ही दादी बोलती थी। दीदी को मेला में फोन नहीं लगा तो कहां से दूर से मैसेज दीदी को दिलाया, दीदी भी आ गई, बाबा के तीन दिन बॉडी रखा गया। कहने का भाव है कि दादी में वो संस्कार बाबा ने भर दिया, पहले से भी था और बाबा ने उसको अंडरलाइन कर दिया, जैसे सोने में सुहागा डालते हैं तो कैसे ये हो जाता है, चमक बढ़ जाती है, उसी तरह दादी में पावर आ गया और सब कारोबार किसी को ये नहीं होने दिया, हिलने नहीं दिया, बांध करके रखे। जैसे कि मम्मा का कहानी आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, मम्मा अव्यक्त हुई अंगूर बांटते बांटते, साकार बाबा थे, बांध लिए, मां गई और बच्चे देख रहे हैं, आंसू ना आए हो सकता है? नहीं, सबके आंखों में आंसू है, नीचे नहीं है। बाबा ने कहा कि आंसू बहाएंगे, बाबा लौटाए नहीं, लौटाएगा नहीं। आप लोग बाबा को जाकर के बोलो, सब वतन में जाओ, बाबा से कहो मेरी मां को लौटाओ, और सबको वतन में, आंखों में आंसू है, वतन में जा रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं। एक संदेशी को ट्रांस में भेज दिया। देखिए ईश्वरीय लीला। तो वो संदेशी ट्रांस में जाकर के देखती है कि मम्मा सोई हुई है और उनके अंदर से सभी रस्सियां पतली पतली धागा लगा हुआ है, बच्चे खींच रहे हैं मम्मा को ऊपर से। सबको फेथ हो गया कि हमारी योग मम्मा तक पहुंची है, बाबा तक पहुंचा है, बाबा भी देख रहा है साक्षी होकर के। तो आकर के संदेशी सुनाई कि बाबा बहुत सारी रस्सियां लगी हुई है, धागे लगे हुए हैं, सब मामा को खींच रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आप लोग खींच रहे हो मामा को, और जोर से खींचो, मामा आ जाए वतन से। स्थिति बनाने के लिए देखिए बाबा को कैसे चतुराई, कैसे ढंग, और बच्चे आंसू बहाने के बजाय स्थिति और मजबूत करके मम्मा को खींच रहे हैं, नहीं बाबा हमारी मम्मा को लौटाओ। तो वो साकार बाबा थे उस तरह से। अब बाबा अभिव्यक्त हुए तो दादी ने अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बना करके, जो भी कोई रोते हुए आए उनको बोले कि नहीं खबरदार, रोना नहीं है, रोना है तो अपने रूम में जाओ, यहां रोना, बाबा के पास रोना नहीं है, किसी ने आंसू नहीं बहाया। और दादी में एडमिनिस्ट्रेशन आई और फिर दीदी आ गई, तो साथ में मिलकर के आप सोच सकते हैं कि ये घटना अगर बाबा दीदी के सामने होती तो दीदी सहन नहीं कर पाती, इतनी दीदी का बाबा से प्यार था। तो दीदी आई, दादी दीदी मिलकर के, और रथ भी मुकुरर किया गया, नहीं तो लोगों ने कहा कि संतरी दादी, बाबा की बहू संतरी दादी ध्यान में बहुत जाती थी, संदेश लाती थी, इनको भोग पर बैठाया जाए, उनको नहीं बैठाया गया। संतरी दादी बोली कि हम तो घर के हैं ना, लोग कहेंगे कि ये बहुत कुछ पहले से जानती है, तो वही संदेश सुना दिया गुलजार दादी को। गुलजार दादी भी बोली कि नहीं बाबा का भोग हम कैसे लगाएंगे। बड़ी दादी ने ऑफिशियली बोला गुलजार, गुल बोलती थी, बहुत प्यार था ना गुलजार दादी से, गुल बोलती थी, गुल आपको जाना है, और गई। तो वो पार्ट दादी का फिर से कहानियां बड़ी है, वो फिक्स हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन पावर, दादी को इतनी पावर आ गई लेकिन अहम नहीं था। अंत तक हमने देखा दादी इतनी बड़ी, कभी ये नहीं कहा कि मैं कहती हूं ये आपको करना है, नहीं, दादी बोल रही है, दादी कह रही है, आपको अच्छा लगता है तो करिए। मीटिंग में भी, मीटिंग में डिस्कस चलता था, ये नहीं हो, वो हो, वो नहीं हो, वो हो, यूथ पद यात्रा निकले नहीं निकले, बहुत बहस होती थी। दादी बोलती थी, दादी ने कहा, दादी का भी विचार है, दादी कह रही है, निकलता है तो दादी हर जगह उद्घाटन करने आएगी, चाहे कितना भी यूथ रैली कितने जगह से भी निकालो, दादी आएगी। सबने तालियां बजाया और फाइनल हो गया।
और भाई साहब, आप जो इतने डॉक्टर्स बुलाते थे और उसमें प्रैक्टिकल कुछ बातें बताएंगे, जो आप इतनी नर्सेस के प्रोग्राम, इतनी आप जो छुट्टी लेते थे मेडिकल विंग की सेवाओं से जुड़ा हुआ, जो दादी से जो आपकी रूबरू कई बातें निर्णय लेने में होती होंगी।
दादी परख शक्ति बहुत थी। अगर कोई जैसे भगवान को कोई याद करता है तो उसकी याद पहुंचती है, तो दादी को भी किसी को याद कर रहा है संकट में या कहीं भी, तो दादी के पास पहुंचती थी। एक दिन की प्रैक्टिकल बात सुनाए, हमारा पंडित पहरा देता था, एक भाई था, वो पंडित नामी था उसका, आगरा का था, पहरा देता था। दो दिन से वो आया नहीं, क्योंकि पहरे देने वालों को एकांत स्थान दादी ने दे रखा था कि रात भर पहरा देते हैं तो दिन को थोड़ा रेस्ट करें ठीक से। तो मरगोल में जो गुंबज देखते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी का मंदिर, तो वो मरगोल में ऊपर सोता था, अभी मरगोल में कौन जाए, उसको 104 टेम्परेचर, तड़फ रहा है। दादी नाश्ता पर बैठी है और मेरे को बुलाई, बोली कि बनारसी मेरे को पंडित की याद आ रही है, 3 दिन से मैं देख नहीं रहा हूं, देख नहीं रही हूं, कहां है जरा देख के आओ। मैं देखा, देखने गया तो तड़फ रहा है। मैं आइस वाटर यूडी कॉलोनी और दवाई लेकर के खुद ही उसको स्पंज करके नॉर्मल 100 टेम्परेचर हुआ तो उसके रूम से आकर के दादी को समाचार सुनाया। इस तरह से सन्यासियों के लिए भी, सबके लिए। एक बार ऐसे ही एक सन्यासी से मिल करके आ रहे थे तो दादी रास्ते में मिल गई, कहां से आ रहा है सन्यासी से मिल के आ रहे हैं, तो कुछ टोली ले गया हम, लेकिन नहीं तो बोली कि आज के बाद कोई भी सन्यासी के पास जाओ तो फूल लेके जाओ या प्रसाद लेके जाओ। दादी, हालांकि वो सन्यासी हमारे नहीं है, वो मानेंगे नहीं, लेकिन उनको भी पालना देती थी दादी। इतनी बड़ी थी, उनके आगे कुछ भी रख दो, जैसे कोई मान लो जो हम आ रहे हैं, मेरे हाथ में कोई गोल्ड दे दिया कि छुपा लो रख लो यज्ञ सेवा में लगा देना, तो मैं रख लूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, गोल्ड है। 180 एकड़ जमीन एक सन्यासी ने दिया, वील कर दिया, हम 4 भाइयों के नाम से, वो वील का पेपर दादी को लाया दिया, तो दादी बोलती है अरे सन्यासियों का धन लेते नहीं है, सन्यासियों की सेवा करते हैं। हमने कहा कि दादी सेवा से वो प्रभावित है, इसलिए सारा प्रॉपर्टी वील कर दिया गौमुख वाला। आप लोग भी आज भी गौमुख का सन्यासी, 180 एकड़ जमीन है। दादी ने बोला कि अभी के अभी लौटाओ, नहीं तो 180 एकड़ पर चलो पांडव उनको शिफ्ट कर दो गौमुख पर, कितना बड़ा है 80 एकड़ जमीन, ये तो ये हमारा ज्ञान सरोवर तो बाद में दिया है। तो कहने का भाव है कि दादी के एडमिनिस्ट्रेशन पावर थे, और निमित निर्माण निर्मल प्यार ऐसे देती थी, बेगरी पार्ट था हम लोगों के भी टाइम में, लेकिन इतना प्यार देती थी कि वो बेगरी पार्ट दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर हैं, चूल्हा फूंकते थे मुंह से, सोचो लकड़ियां, आज इतने बड़े मकान हैं, शेड हैं, उन दिनों में लकड़ी पहाड़ पर रखते थे क्योंकि शेड था नहीं, बारिश खूब होती थी, वो बारिश की लकड़ी गीली, पानी टपक रहा है, उस लकड़ी को चूल्हे पर रखते थे, गर्म हो जाता था, सुबह आकर के चाय बनाते थे 2 बजे। एक दिन चूल्हा जले नहीं, इतना, लेकिन दादी का इतना प्यार था कि वो पता नहीं लगता था, इतना प्यार, हुज्जत भी उतना, प्यार भी उतना, कहीं भूल करेंगे तो छोड़ भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, कोई भाई ने कुछ गलती किया, दादी सब इंचार्ज को बुलाई मेडिटेशन हॉल में, लाल लाइट जल रही है, योग कर रहे हैं, दादी आगे के दरवाजा से आई और बड़े आगे के आगे दरवाजा से आकर के ऐसे झुक करके लाल लाइट में बोलती है कि दादी आप लोगों से माफी मांग रही है। अरे भाई गलती हम लोगों ने किया, माफी दादी मांगे क्यों? दादी बोलती है कि दादी को इतना पावर नहीं है कि दादी के प्रेजेंस में ये नुकसान हो गया। दूसरों की गलती अपनी गलती मानना, ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है ये। तो दादी की बातें मैं क्या बताऊं, इतनी दादी ये थी, छोटे के साथ छोटे बन करके, बड़े के साथ बड़े बन करके डिसीजन लेती थी, प्यार देती थी, इतना दादी में ये था। उन्होंने कभी हमने अभिमान नहीं देखा, कोई डॉक्टर आए बिजी है, कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, दादी के कान में हम रोज नाश्ते पर मेरे को दादी बुलाती थी, यज्ञ बड़ा है तो पूछती थी कौन बीमार है कौन कैसे है, तो दादी को समाचार सुनाता था। दो तीन दिन मुनि बहन ने सुना, मेरे को बुलाकर बोली कि नहीं कल से तुम नहीं आना, दादी को शांति से नाश्ता करने दो, रोज बीमारों की बात सुना रहा है, ये बीमार है वो बीमार है उसको वो तकलीफ है, अरे शांति से नाश्ता तो करने दो। तो मैं नहीं गया, दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन दादी बुलाई, कहां बिजी है तुम आ नहीं रहा है, और मुन्नी सामने खड़ी है, मैं इधर हूं दादी इधर नाश्ते पर बैठी है, पूछ रही है, और मैं क्या बोलूं अभी, मैं बोलूं कि मुन्नी बहन ने मना किया है वो भी तो ये नहीं है। तो मुन्नी बहन ने बोल दिया कि दादी मैंने मना किया है कि दादी के नाश्ते पर कोई पेशेंट की बात नहीं करनी है। दादी ने कहा मुन्नी पहले मैं पेशेंट की बात सुनूंगी उसके बाद नाश्ता करूंगी, आज के बाद जब तक हम पेशेंट की समाचार नहीं सुनूंगी नाश्ता नहीं करूंगी। माने दादी दिल लेती थी, इतनी दिल लेती थी, बड़ी रमणीक जितना थी उतना गंभीर भी थी। एक दिन मैं लेट आया था, घर गया था, एक दिन लेट आया, मीटिंग चल रही थी, टोली हम सबको बांट रहे थे, तो दादी के आगे गए टोली लेकर के, दादी बोलते कि मेहमान बनकर आया है, एक दिन लेट, वो दिन और आज दिन कभी एक दिन लेट नहीं हुए हैं। तो कहने का भाव, दादी ने जो किया, हमारी दादियों ने किया, दीदी ने किया, दादी जानकी ने किया, इतनी अनुभव है कि सुनाते रहे तो सारा दिन भी पूरा नहीं होगा, समझ रहे ना, इतनी अनुभव। और सच में जो उनका जीवन था, ब्रह्मा भोजन बड़ा सिंपल, लेकिन साथ बैठ करके हिस्ट्री हॉल में सब बैठते थे, दादी भी जमीन पर बैठती थी, दीदी जमीन पर बैठती थी, आज कुर्सी टेबल है ना, नहीं। पहले भंडारा कहां था, जो स्टॉक है जो टेलीफोन एक्सचेंज है वहां भंडारा था, बोली दादी वहां बैठती थी, आज वो शाही भंडारा बना है, दादी के टाइम में वो था। तो खाने का भाव की दादी में वो पावर जो थी ना, वो पावर अहम वाली पावर नहीं थी, वो स्नेह की मातृत्व वाली पावर जो थी ना, लोगों को बांध करके रखी, घायल करके रखी। दादी आ जाए दूसरा कोई विचार हो ही नहीं सकता है। और डॉक्टरों के लिए तो बहुत दादी का प्यार था, कितना भी बिजी रहेगी दादी मेरे कान में बोल देगी, देखो मैं पांडव भवन चली जाऊंगी ना तो मैं, मेरे को लोग छोड़ेंगे नहीं, और मैं निकल नहीं सकती हूं, जब मुरली सुना के उतरती हूं नीचे तो अब मेरे गाड़ी में चुप से बैठ जाना, हम चल जाएंगे, किसी से पूछना नहीं है। और वही करते थे, दादी के गाड़ी में पीछे बैठ जाते थे, दादी आगे बैठती थी, और टाटा स्टेट गाड़ी, हम लोग हॉस्पिटल में सारा पेशेंट से दादी मिल के आती थी, एक एक से मिलती थी। तो दादी हर फील्ड में सबके दिल जीत लिया था, इसीलिए दादी 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 हो गए।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सुंदर भाई साहब। अभी मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से कुछ प्रैक्टिकल अनुभव की बात भाई साहब चाहिए हमको, जैसे आप सभी भट्टी में आए हुए हैं हमारे भाई सब भाई बहन, बाबा कहते हैं कि भाई मुरली केवल भोजन खाना नहीं है, हजम भी करना है। अब ये विचार सागर मंथन, दादी इतना बिजी होते हुए, सभी दादियों के लिए कुछ आप ऐसे प्रैक्टिकल बातें बताएं कि हम दादियों से कैसे सीखें, दादियां कैसे विचार सागर मंथन करती थी मुरली का, या कैसे वो इतना बिजी होते हुए मुरली पर अटेंशन कैसे देती थी, और हम कैसे दें, कुछ प्रैक्टिकल बातें दादी की, क्योंकि आप लंबा समय साथ रहे हैं।
बनारसी भाई ने जैसे बताया दादी का, जैसे बताया दादी मतलब प्रैक्टिकल जैसे दादी कैसे करती थी, जब मैं माउंट आबू आया और हम लोग तो इतने बिजी हो गए, कई बार तो मुरली में नहीं आते थे, मुरली में नहीं आते थे दादी पकड़ लेती थी, शाम को आते थे तो दादी पकड़ती थी, गुप्ता जी इधर आओ, मैं दादी क्या हुआ, सुबह क्लास में दिखाई नहीं दिए, मैं दादी सुबह सुबह पेशेंट आ गया, जैसे ही मैं आ रहा था अस्पताल में, अस्पताल से इधर आ रहा था तो पेशेंट आ गया, कितने बजे पेशेंट ठीक हो गया, तो मैं दादी 7:20 पे पेशेंट स्टेबल था तो आ सकते थे ना, मैं दादी क्लास के बीच में आते हैं क्या कभी, क्लास तो पहले शुरू हो जाती, नहीं अगर आपको सब जानते हैं डॉक्टर है लेट हो सकता है, आपकी सीट फिक्स है आगे सोफे पे, आप आ जाओ, आप आके बैठ जाओ। आपको धारणा के लिए मुख्य साथ सुना तब तो उसमें वरदान वगैरह नहीं होते थे, वरदान से लोगों ने तो आप दादी का इतना इंपॉर्टेंस था मुरली के ऊपर, दादी ने मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए क्लास में, क्लास में आना ही है, चाहे वो एक ही लाइन सुनने को मिले पर क्लास में आना ही है, क्लास में आप क्लास की शोभा हो। मैं दादी ने ये बात बताई कि आप क्लास की शोभा हो, अगर आपकी आपको क्लास में ये इंद्र की दरबार है, इसमें आपका स्थान है, तो जब भी आप सेंटर पर जाते हो तो आपको सेंटर पर जाना जरूरी है, हम सबको जाना जरूरी है। भले हम सुबह मैं 3:30 मुरली पढ़ता हूँ, 3:30 पढ़ता हूँ, फिर योग करने के बाद फिर दोबारा पढ़ता हूँ, मेरी 4 बार मुरली हो चुकी होती है क्लास में आने से पहले, 5वीं बार क्लास में सुनता हूँ, 6वीं बार वॉकिंग करते समय एक एक विचार सागर मंथन करता हूँ। और क्योंकि विचार सागर मंथन जो दादी ने सिखाया ना, ये जो बाबा का मैसेज दादी गुलजार के द्वारा आया कि जैसे आ जाएगा ना, बाबा ने गाय को भी इतनी अकल है कि उगाड़ती है, साधन उगाड़ती, उगाड़ना माना क्या है, रिवाइज करती है और रियलाइज करती है, उसको बारीक करती है। तो उसमें जो अंदर से महसूस होता है ना, सचमुच बीमारियां उससे ठीक होती हैं। आज 10,000 लोगों की बीमारी ठीक कैसे हुई, हार्ट की पिछली बीमारी कैसे ठीक हुई, उसका प्रैक्टिकल हमने यही सिखाया, यही लोगों को कहा कि मुरली जेब में रखो, चार्ट जेब में रखो, दादी ने ये बात सिखाई। दादी ने ये कहा था मुझे कि लोगों को बताओ कि मुरली की,
हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम से भाई साहब से मिल रहा था, तो भाई साहब वॉक कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए बहुत जरूरी, बोले नहीं मेरी चार्ट में वॉकिंग है ना, तो मैं पेशेंट को कैसे बोलूंगा, तो मेरा वॉक का चार्ट है, तो मैं अभी वॉक ही करूंगा, जो बोलना है अभी करो, क्योंकि मेरी चार्ट है वॉकिंग की अभी। तो मैं बोला ये चार्ट, बोले हाँ ये चार्ट मैं नहीं भरूंगा तो मैं दूसरे को कैसे कहूंगा ये भरो चार्ट, तो मेरा ये चार्ट में वॉकिंग है अभी, तो वॉकिंग करते ही मैं बात कर सकता हूँ। सॉरी,
मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट बात क्या थी दादी ने, क्योंकि मुझे याद है 26 दिसंबर को प्रोग्राम लॉन्च हुआ, दिल्ली के लोग, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग आए थे, एम्स के लोग आए हुए थे, दूसरे लोग DRDO से लोग आए हुए थे, हमारी भी तीनों दादियां वहीं पे थी, विदेश की बहनें थी, तीन भाई थे, तभी जगदीश भाई उस समय नहीं थे, मतलब जगदीश भाई थे पर वो दिल्ली में थे, तो हमने बाकी तीनों भाई थे ग्लोबल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में, और प्रोग्राम लॉन्च हो गया। तो दादी ने 28 तारीख को मुझे सुबह 28 दिसंबर को, 27 को लॉन्च हुआ, 27 दिसंबर को, 28 को मुझे सुबह इशारा किया मुरली में कि गुप्ता जी मुझे मिलना मुरली के बाद। तो दादी का रूम नहीं पांडव भवन में, तो दादी बैठ गई सोफे पे और मेरे को एक साइड में बिठा दे। अच्छा गुप्ता जी अभी तो प्रोग्राम लॉन्च हो गया, अभी कभी प्रोग्राम करने वाले हो, मैंने कहा दादी 27 फरवरी को करेंगे, 27 फरवरी को प्रोग्राम शुरू करें, तो 2 महीने हैं। अच्छा आपको बीमारी हार्ट की बीमारी किसको कैसे होती, क्यों होती है हार्ट की बीमारी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दादी को कितना टेंशन था, किसको होती है, मैंने दादी जो जल्दीबाजी ज्यादा करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, बताया जैसे आपको बताया ना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बताया। अच्छा आपको कभी जल्दीबाजी होती है क्या, तब तक मेरा हार्ट ठीक हो चुका था। दादी कभी कभी तो हो जाती है ना, पेशेंट सीरियस होता है, मरने को होता है, नर्स सहयोग नहीं देती, डॉक्टर साथ में सहयोग नहीं देते, तो डॉक्टर उस समय इतने ट्रेन डॉक्टर नहीं थे हमारे पास, अस्पताल में नर्सेज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, फैसिलिटीज भी ज्यादा नहीं थी, तो थोड़ा जल्दी तो हो जाती है। कभी चिंता होती है क्या, कभी कभी तो हो जाए, कभी गुस्सा आता है क्या, दादी बाहर तो नहीं आता, अंदर अंदर तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा तो आ जाता, तो इतना सा तो आता है, दादी ऐसे करके बात करती, इतना सा तो आता है ना, मैं दादी नहीं आता, इतना सा तो आता है ना, मैंने कहा दादी इतना सा तो आता है। तो अच्छा कभी ऐसा होता है क्या, कोई बात फील होती है क्या, बाला बहन कुछ कह रहे थे फील होता है क्या, कोई कुछ कहता है तो फील होता है, वैसे तो नहीं फील होता, थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा सा दादी ऐसे इतना सा तो होता हो, हाँ दादी थोड़ा तो होता है। मैंने कहा अच्छा फिर आपको फील होता है, आपको ऐसे होता है तो फिर दूसरों को क्या भी होगा, फिर कैसे ठीक होंगे। मैंने कहा दादी उनको तो भाषण करना, भाषण करके बता देंगे। कहते भाषण करने से कुछ नहीं होता है। मैंने ठीक है, फिर दादी कहते अच्छा खाने पीने से भी कुछ कनेक्शन है क्या। मैंने कहा दादी जो पराठा खाते, पकौड़ा खाते, समोसा खाते, मिठाइयां खाते, तली चीजें खाते, दूसरी चीजें खाते, आप खाते हो क्या। दादी गुरुवार का भोग तो खाते हैं ना, बाबा का भोग होता खाते ही हैं, तो बाकी तो नहीं खाते, आप टोली देते हो खाते हैं। कहती है आप खाते हो। मैंने कहा दादी खाते, तो बाबा का भोग खाना ही है ना। कहते फिर आप दूसरों को कैसे कहोगे कि आप नहीं खाओ, उनको डायबिटीज भी होगी, उनको हार्ट की बीमारी, उनको नुकसान करेंगे। तो दादी मैं नहीं खाऊं क्या? कहते यहां से खाओ ना, यहां से क्यों खाते हो? तो मैं को गुरुवार एक हफ्ते में एक तो चांस मिलता है खाने का, अच्छे से खाना चाहिए। ये 27 दिसंबर 1997 की बात है ना। और उस दिन से फिर दादे का सैर के बारे पूछा, नींद के बारे पूछा, चार्ट के बारे पूछा। चार्ट भरते रोज क्या? मैंने कहा, फिर दादी ने पूछा चार्ट कुछ कैसे उनकी कैसे पता कर लगाएगा कि लोग फॉलो करते नहीं करते। दादी ने उसको चार्ट भरने को देंगे, 10 पॉइंट का चार्ट देंगे, ऐसे ऐसे योग है कि नहीं, कितने एक घंटे में कितना मिनट उनको बाबा याद रहता है या सोल कॉन्शियसनेस आत्मिक स्थिति का अनुभव। आप चार्ट रखते हो क्या? दादी मैं तो चार्ट नहीं रखता हूँ, कभी कभी रख लेते हैं, दो चार दिन करते हैं, फिर नहीं मिस हो जाता है। कहते फिर आप क्या करोगे? आप तो क्या करोगे? आपको तो कोई फायदा ही नहीं है, आपको तो क्या सिखाओगे? दादी उनको बताएंगे ना। फिर कहते आपके अंदर नहीं है तो उनको क्या बताओगे? मुरली कितनी बार पढ़ते हो? मैं दादी एक बार आप सुनते हैं, एक बार कभी कभी शाम को देख लेते हैं सोने के पहले, कभी नहीं देखते हैं तो। मुरली तब मिलती थोड़ी ना थी हम तो, अब तो मुरली मिलती है, तब तो कागज पे नोट करते थे, तो तब तो फोटो कॉपी भी नहीं होती थी।
बिल्कुल।
तो दादी कहते फिर क्या फायदा, दादी तो 5 बार पढ़ती है मुरली, तो आपको याद है मुरली आज की? अब बाप दादी ने दादी हाँ 4-5 बातें तो याद है, सुना देता हूँ। दादी कहते 4-5 बातों से क्या होता है, सारी मुरली याद है क्या? नहीं याद है। तो दादी कहती है फिर दादी ने कहा नहीं आपको हार्ट की बीमारी ठीक कैसे हुई थी आपकी? मुरली से ठीक हुई थी ना। तो मुरली तो दादी ने कहा बाबा ज्ञान का सागर है, मुरली ज्ञान मानसरोवर है, इसमें सारा दिन डुबकी लगाते रहो, सारा दिन डुबकी लगाओ, एक एक लाइन को महसूस करो जो बाबा ने आपको मैसेज दिया था। गुलजार दादी मैसेज लेके आई थी। तो अभी भूल गए क्या? हार्ट ठीक हो गए तो भूल गए? तो मैंने कहा नहीं दादी, तो यही लोगों को बताना है। और दादी ने मुझे एक एक बात का कहा कि आज के बाद अभी 2 महीने इसकी मूर्त बन जाओ। और वो दिन और आज का दिन वो जो बातें रही, तब से मैंने चार्ट रखना शुरू किया और आज तक मेरी जेब में आज भी चार्ट है।
नहीं प्रैक्टिकल
कौन सी तारीख? ये देखो ये घंटे घंटे याद का चार्ट है, एक तरफ दिनचर्या का चार्ट है। देखो आज कौन सी तारीख है, 27 तारीख है ना, आज भी 27 तारीख है। देखो 26 तारीख तो भरा हुआ ना देखो।
तो भाई साहब ये सब बहुत बिजी रहते हैं जो
घंटा आए हैं
भाई बहन। भाई साहब ये दुनिया में लौकिक में बहुत बिजी रहते हैं, ये लोग कैसे रखेंगे?
हम 3:30 बजे उठते हैं और 3:30 से लोग
ये बहुत बिजी रहते हैं, तो ये लोग
सोते हैं ना, और दिन में मुश्किल से 1 घंटा 40 मिनट रेस्ट करते हैं। तो हमें तो बल्कि लाइफ पहले मैं भी बोलता था मैं बहुत बिजी हूं, मैं बिजी अभी कभी अभी तो हर समय इजी रहते हैं बिजी। और दादी बोलती थी बिजी और इजी मन की बात है, दादी जानकी भी इस बात को बोलती थी कि बिजी और इजी मन की बात है। अगर बिजी जब होता है जब विचार बहुत तेज चल रहे होते हैं, और अगर विचारों की स्पीड बाबा की याद में तो विचार की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, आप इजी हो जाते हो। तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम तो सारा टाइम खाली रहते हैं, अस्पताल में जाते तो भी खाली है,
एक
सुबह से लेकर रात तक
एक
खाली।
म्यूजिक डायरेक्टर है वो, सॉरी मैं वो बड़ा ऐसे मैं भी नीचे गया हुआ था, तो वो आया बोले भाई डॉक्टर साहब से मिलने क्या हो गया आपको? बोले डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं बहुत फ्री हूँ, आपके पास तो फुर्सत नहीं है तो मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, मैं आ जाता हूँ अहमदाबाद। वो बेचारा ऐसा शर्मिंदा बोले मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं दिन भर बहुत फ्री हूँ, आप बहुत बिजी हो, मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, मैं आने को तैयार।
सचमुच में हम
तो आप सब लोग बिजी है ना, चार्ट नहीं रख सकते तो
हमें तो टाइम ही नहीं, हमें तो काम ही कुछ नहीं है। मरीजों से मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, मरीजों को प्यार से मुस्कुरा के मिलते हैं, वो हमको मुस्कुराते हैं, किसी से हम काम कुछ काम, पेशेंट देखना काम होता है क्या? दवाई लिखना काम होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। राउंड लेना काम होता है क्या? वहां भी पेशेंट से जाके बात करते हैं, कोई वजन वाला काम तो करते ही नहीं है। तो हम लोग तो मस्त रहते हैं सारा दिन, है ना। तो जब आप भी मेडिटेशन करेंगे सही ढंग से तो आप मस्त हो जाओगे, इजी हो जाओगे। और बाबा की योग कुछ भी नहीं है, योग को लोग कहते योग नहीं आता, योग नहीं आता, योग कुछ भी नहीं है। दादी ने यही सिखाया, योग कुछ नहीं है, बाबा की लाइनों को, बाबा के महावाक्य को जीवन में लाना ही योग है। वो बन जाना मुरली के, मुरली का स्वरूप बन जाना ही योग है, है ना। और एक बात मुझे याद है कि बहुत याद आती है, दादी ने मुझे रोज कहा था कि मुरली के बाद मुझे 5 मिनट मेरे पास बैठ के जाना है, तो मैं दादी के पास रोज पहुंच जाता था। तो मुरली के बाद 5 मिनट बैठता ही था दादी के पास, 5 का भी 10 मिनट 15-20 मिनट भी हो जाते थे बैठे बैठे, दादी कुछ ना कुछ सिखा देती थी। तो दादी ने एक दिन ऐसे कहा, वो ना जब अंदर घुसते ना तो बाबा का फोटो लगा हुआ था, तो दादी ऐसे खड़ी थी डाइनिंग में जा रही थी, तो मैं दादी के पास मिल रहा, बाहर बैठा था पहले चांदनी चौक में, वहां बैठे थे बाहर, और फिर दादी अंदर गई तो दादी बात करते करते अंदर गई, फिर दादी बाबा के चित्र को बोलती है, देख कर कहती है, दादी जैसे दादी आपसे बात करती है जैसे बाबा से बात करती है। फिर इतने दादी ने मुझे कहा, जब दादी थक जाती है ना तो बाबा मेरी मालिश कर देता है। मैं दादी को देखने, मैंने ऐसे कहा, दादी आप 2000 लोगों को टोली देती हो ऐसे ऐसे करके। दादी को एक बार हम कहते हैं ना, दादी के हाथ में टोली, दादी ऐसे नहीं कहती मैं अपने आप उठाऊंगी, उठा के मैंने, दादी मैं 2000 बार ऐसे करूं तो मेरा हाथ ही थक जाएगा, आपको 2000 बार ऐसे कैसे कर लेती हो। तो दादी कहती, जब दादी थक जाती तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मुझे याद है एक बार हार्ट का प्रोग्राम माउंट आबू में ही था, जब हम तो 14-15 पेशेंट आते थे, उस समय डॉक्टर भी सेवा में कोई नहीं आते थे, कोई सेवाधारी भी नहीं होते थे। तो मैं सारा दिन पेशेंट देखे, वो पेशेंट को लेक्चर भी करना होता था, उसमें स्लाइड भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता था, कोई प्रोग्राम तो बना नहीं हुआ था। तो मैं सारा पीछे पीछे बैठ के स्लाइड बनाता था, ओएचपी होता ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था पहले, ये नहीं होता था, स्लाइड प्रोजेक्टर नहीं होता था, एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं होते थे पहले, तो ट्रांसपेरेंसी पे स्लाइड बनाते थे पीछे बैठ के। और फिर जब शिलू बहन क्लास कर रही होती थी तो फिर हम सारा दिन पेशेंट उधर वार्ड में भी देखते थे, कैजुअलिटी में भी देखते थे, और वो भी पेशेंट जो होते थे ना, साई साई रात 14 पेशेंट होते, 13-14 पेशेंट होते थे, तो उनको मैं, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी, तो मैं दिन में सारा दिन बिजी रहा, लेक्चर भी रहे, सारा कुछ रहा, और दिन में भी एक मिनट रेस्ट नहीं मिला, और शाम को रात को भी 3 बज गए मुझे, कभी इस कमरे में, कभी इस, कभी पेशेंट को कुछ हो जाए, कभी पेशेंट के रिश्तेदार को, वो साथ में उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी था उसको कभी कुछ हो जाए, अभी कमरे में आऊं इतनी देर में दूसरा पेशेंट, इतना मैं वहीं ऊपर ही रहता था, तभी साथ में पेशेंट के साथ ही एक बेड कमरा होता था, कमरे में आऊं जैसे ही मैं आऊं दूसरा कोई बुलाने आ जाए, फिर दूसरा बुलाने आ जाए, दूसरा, 3 बज गए, मैं कमरे बेड पे आके बैठा 3 बजे आके, तो मेरा सारा शरीर रोम रोम दर्द कर रहा था, रोम रोम दर्द कर रहा था, और ऐसा आंखें पक जाती ना आंखें, जैसे दिन में भी रेस्ट नहीं किया, रात को भी रेस्ट नहीं, भी एक मिनट भी मिला, तो ऐसे सारा शरीर भी भारी हो रहा था। तो मैं बाबा के चित्र की तरफ ऐसे बैठे बैठे देखने लगा, मुझे दादी की बात याद आई, दादी को, दादी ने कहा था कि भी, जैसे कहा था ना, मैंने कहा बाबा आप दादी की तो मालिश कर देते हो, आज तो मैं भी थका हुआ हूं तो मेरी मालिश और ऐसे ही मैंने मन मन में बोला, ऊपर से नहीं बोला, मन मन, और ऐसा हुआ, जादू हुआ कि मेरे अंदर से ना ये यहां पर अपने आप ही कुछ होना शुरू हो गया, कुछ होना शुरू हुआ, यहां कुछ होना शुरू हुआ, हाथों में ऐसे ऐसे सारे शरीर नीचे तक, शायद मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगा होगा, 30 सेकंड भी, घड़ी में तो टाइम थोड़ा देखा था, तो आधे मिनट में ही मेरा शरीर फूल जैसा हो गया, मतलब सारा शरीर में दर्द खत्म हो गया, पूरा दर्द और एकदम फ्रेश हो गया एकदम से, है ना। तो बाबा की वो गजब की मालिश मैंने देखी, है ना क्या होती है मालिश। और इतनी देर में फिर दरवाजे पे किसी ने नॉक कर दिया कि आपको वो पेशेंट उधर गया, उधर जाके अटेंड किया, इतनी देर में फिर 3:30 बज गए, फिर वो मुंह हाथ धो के ब्रश करके फिर मैं 4 बजे योग में चला गया, और सारा दिन फिर काम किया, जरा भी थकावट नहीं हुई, हाँ उस रात सोने को मिला, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो मतलब फ्रेशनेस कैसे होती है, जो इजी की बात है ना, और सारा दिन फ्रेश कैसे रहते हैं, योग निद्रा जिसे कहते हैं, योग निद्रा, निद्रा योग, निद्रा जीत। तो दादी ने प्रैक्टिकली हमको योग निद्रा करना सिखाया, योग में ही निद्रा करना सिखाया, मतलब आप इतना अच्छी स्टेज में चले जाओ कि आप डेल्टा रिदम कहते हैं, डेल्टा में चले जाओ। दादी कहती थी जब उस आनंद की स्थिति में चले जाते हो ना, तो 5 मिनट की वो स्थिति, आनंद की स्थिति 5 घंटे नींद के बराबर होती है। क्योंकि मैंने कहा था दादी, दादी कहती थी वो मुरली में आता ना, अंत में आपको सेवा का टाइम, मतलब रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, 5 मिनट की नहीं, 5 मिनट नींद नहीं कर पाओगे। तो मैं, दादी अंत में ऐसा कैसा हो जाएगा कि हम लोग बिना नींद के काम करेंगे। तो दादी कहती है जब बहुत अच्छी स्थिति होती है, आनंद की स्थिति, बाबा के साथ लवलीन स्थिति होती है ना, तो उसमें 5 मिनट की वो स्थिति होती है ना, तो 5 घंटे नींद के बराबर होती है। इसको बोलते हैं योग निद्रा। और निद्रा जीत के सोने के पहले बाबा को लेटर लिख के, जो वो मैंने शुरू किया, लेटर लिख के, चार्ट भर के, मुरली पढ़ के, बाबा को याद करके सो जाओ, सूक्ष्मतन में बाबा की गोद में सो जाओ, सूक्ष्मतन आपका बेडरूम है और बाबा की गोद आपका बेड है, उसमें सो जाओ, तो आपको 4 घंटे की नींद 8 घंटे जैसा काम करेगी। इसको बोलते हैं निद्रा योग। और सुबह उठते ही आपका योग लग जाएगा। और निद्रा जीत, कभी मुरली में नींद नहीं आएगी, है ना, कभी कोई काम में नींद नहीं आएगी। तो ये योग निद्रा, निद्रा योग, निद्रा जीत दादी ने सिखाया। प्रैक्टिकल, फिर मेरी कुछ चीज और फील होती दादी के साथ, तो दादी को बोलता दादी मैं तो सोच के आया था यहाँ पर तो चलो आधा घंटा सुबह थोड़ा दो चार घंटा पेशेंट देखेंगे, बाकी तो शाम को योग करेंगे, दो घंटा शाम को योग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा दिन योग में रहा करेंगे, इसलिए तो माउंट आबू आया, थोड़ा रिसर्च वर्च तो हो जाएगी, रिसर्च तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो जब जब कभी कभी रोज रोज ना रिसर्च होती है। तो दादी कहती है शाम को दादी बैठ के योग करती है क्या? तो मैंने कहा दादी आप तो नहीं बैठते, आपको तो शाम को तो मीटिंग करती हो, बातें करती हो लोगों से, तो मतलब दादी तो उसमें आएगी नहीं, दादी को तो मिलेगा नहीं, कर्म योगी बनना होता है, कर्म योगी, हर समय योग रहना चाहिए, इसमें फील करने की बात ही नहीं है। आपको अमृत वेला पेशेंट है तो आप देखना पड़ेगा ना, मुरली के टाइम पेशेंट देखना पड़ेगा ना, अटेंड तो करना ही पड़ेगा ना। तो दादी ने मुझे बताया कि कैसे कर्म योगी, हर योग कर्म करने से पहले योग, पहले योग हो और फिर कर्म, क्योंकि बिना कर्म के तो हम एक सेकेंड भी रह नहीं सकते, हार्ट 70 बार धड़क रहा है एक मिनट में, तो कैसे बिना आत्मा के बगैर धड़कता है क्या हार्ट? तो इसलिए हर समय योग, हर समय योग। एक लाइट लास्ट में एक बात और बता देता हूं, एक दिन दादी बैठी थी ऊपर ही, पांडव भवन की बात है, तो दादी कहती गुप्ता जी आप बताओ अष्टतन कौन बनेंगे? तो मैंने कहा दादी आप बनेंगे ना, और दादी बनेगी, चंद्रमणि दादी बनेगी, निर्मल शांता दादी बनेगी, और ये बनेंगे, ऐसे ऐसे मैंने जो मेरे को पता था, जितनी अकल थी उतनी बात की, मैं तो नया नया था ऊपर तक, इतना था ही नहीं। तो मैंने कहा दादी आप बनेंगे ना? अच्छा। तो दादी कहती उस दिन दादी को ऐसे आराम से पता, बड़े आराम से बैठी दादी, अकेली बैठी थी, थोड़ी देर पहले वो बैठी थी मोहिनी में साथ में बैठी थी, फिर उठ के चली गई। तो फिर दादी ने मुझे तब ये पूछा, तो मैंने कहा दादी अब तो, दादी कहती जिनको श्वासो श्वास बाबा और मुरली याद रहती है ना वो अष्टतन बनेंगे, जिनको श्वासो श्वास बाबा और मुरली, बाबा ने क्या कहा वो याद रहता है, वो अष्टतन बनेंगे। सो सचमुच देखो तो मैंने एक दिन फिर काउंट किया कि 16,000 सांस हम दिन में लेते हैं, लगभग 16,000 सांस लेते हैं। तो दादी को तो मैं देखा, दादी को तो मुरली का, दादी जब बीमार हो गई तब भी दादी को तो मतलब और कुछ कहो दादी मुरली ऐसे, लेकिन दादी मुरली दादी को मतलब ऐसे होता था ना थोड़ा, दादी वैसे हो जाती थी ड्राउजी, दादी मुरली मुरली मैं मुरली सुनाता हूँ, तुरंत दादी आँख खोल लेती थी। तो मुरली की दादा की दादी की इतनी सजग थी, बाबा के माँ बाप की कितनी सजग थी। तो ये दादी ने कहा, फिर दादी कहते अच्छा 108 की माला में कौन आएंगे? मैंने कहा दादी जो महारथी होते हैं वो 108 की माला में आएंगे। तो मैंने ऐसे बताया, तो दादी कहती है जो कम से कम 100 बार मुरली को, जो बाबा और मुरली जिनको 100 बार याद आती है वो 100 की माला में आते हैं। तो मैंने कहा 100 बार अब सोचो 100 बार मतलब एक घंटे में 6 बार ना, कम से कम 16 घंटे है ना जागना, तो 16 घंटे तुम जागते ही ना। तो दादी कहती है दिन में हर घंटे में कम से कम 6 बार तो होना चाहिए, 5-6 बार तो बाबा याद आना चाहिए ना, बाबा ने क्या कहा वो तो याद, मुरली अंदर बजने की चीज होती है ना, मुरली तो अंदर बजनी चाहिए ना, बाबा ने क्या कहा, आपको अब्दुल कलाम ने ये बोला आपको याद रहता है, बाबा ने क्या बोला वो याद रहता है क्या आपको, उसने क्या बोला वो याद रहता है आपको, मुरली बाबा ने कहा वो याद रहती है क्या? तब मेरा मुरली पर टेंशन गया, क्योंकि बाबा ने एक बार याद होगा आपको, बाबा की अमृत वेला किताब में भी लिखा हुआ है, जो एक घंटा लेट मुरली में वो सत्य में एक जन्म लेट होगा, दो घंटे जितने जितने यहां के घंटे लेट उतने वहां के जन्म लेट, याद है आपको लिखा हुआ। तो वो किताब वो बाबा की मुरली से है ना, तो अगर आप 7 बजे मुरली सुनते हो 7 से 8 तो पहले जन्म में आओगे, और दूसरे 8 बजे सुनते हो तो एक जन्म मिस, 9 बजे सुनते हो नाश्ता करके सुनते हो तो 2 जन्म मिस, 3 घंटे 10 बजे सुनते हो तो 3 जन्म मिस, 4-11 बजे सुनते हो तो 4 जन्म मिस, 12 बजे सुनते हो तो 6 जन्म मिस, और शाम को ही सुनते हो सीधा ही जाके तो पूरा सत्ययुग मिस सुना। तो ये जो है बाबा दादी ऐसे छोटी छोटी बातें सिखाती रहती थी, छोटी छोटी बातें दादी कहते, मैंने कहा दादी कभी आपको इतनी आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हो, इतने लोगों को मिलते हो इतने, फिर दादी तो ये तो बनारसी भाई को बहुत अच्छे से कही, दादी सबको पता है ये बात, तो कि दादी कहती दादी अपने आप को हेड समझती ही नहीं है ना, दादी अपने को हेड समझे तो दादी को हेडेक हो जाए। फिर दादी ने मुझे कहा गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? इंचार्ज का मतलब क्या होता है? मैंने बता दी, जो एचओ आपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, कई डिपार्टमेंट है शांतिवन में, श्री शांतिवन की बात है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, अपने 49 डिपार्टमेंट है, 49 एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंचार्ज कहते हैं। कहते हैं इंचार्ज का मतलब ये नहीं होता है, इंचार्ज का मतलब होता है जो इन रह के ना अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, है ना, परमात्मा से बाबा से चार्ज करता रहे, और जो उसके संबंध संपर्क में उसके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको क्या करता रहे, शांति प्यार खुशी बांटता रहे। कोई सेवाधारी कोई तकलीफ में आए और हंसता हुआ जाए उसको बोलते हैं इंचार्ज, नहीं तो आउट चार्ज। दादी बोलते नहीं तो आउट चार्ज, ऐसे करके मतलब जो मतलब आंख दिखा के बात करता है ना किसी को, वो आउट चार्ज है, इंचार्ज नहीं है। तो दादी की तो बहुत सारी बातें हैं, सुनते रहोगे सुंदर सुंदर अनुभव है दादी के साथ के, बनारसी भाई के।
अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस बंद करके अब चलें पुरुष। क्या किया जाए,
दादी की वंडरफुल बातें हैं दादी की।
मक्खन जो आपने दिया सर, वो मक्खन रियल में जो,
तो प्रैक्टिकल बातें। दादी एक एक पेशेंट, जब मैंने पहली बार जब हार्ट के पेशेंट को, 5 पेशेंट आए थे पहले ग्रुप में और 5 उनके साथी थे, रिलेटिव थे, क्योंकि हम बिना वाइफ के या बिना हस्बैंड के पेशेंट को बुलाते नहीं थे। तो दादी ये कहती है कि गुप्ता जी जो ना ये जो क्या नाम ये, दादी कहती है, मैंने कहा दादी हार्ट पेशेंट है, कहती है इनको कभी से कागज से कभी हार्ट पेशेंट नहीं बोलना, ये बाबा दिलाराम है, ये दिल वाले बच्चे हैं। तब से दिल वाला शब्द आया ना, दिल वाले माना ये हिम्मत वाले बच्चे जो अपना भगवान से ही ऑपरेशन कराने आए हैं, है ना, ये हार्ट पेशेंट नहीं है, है ना। तो दादी के अंदर ये, फिर दादी ने कहा था, ये दादी ने बात कही थी कि गुप्ता जी जो बीमारी होती है ना वो तो आपस में दोनों की बनती नहीं ना, पति पत्नी की ढंग से, तो ये हार्ट की बीमारी होती है, दो की आपस में बनती तो हार्ट की बीमारी होती है, तो पति पत्नी को साथ में बुलाना। तो तब से हमने ये शुरू किया कि हार्ट की बीमारी जो है हमेशा पति को, हार्ट पेशेंट है तो साथ में उसकी पत्नी आवे, नहीं तो नर्स हमें कहां से लाता है इतनी नर्स।
सही बात है।
अब देखो पति बीमार है तो पत्नी नर्स है ना उसकी, और पत्नी बीमार है तो पति उसकी नर्स है, तो अब हर कमरे में संभाल तो वही करेंगे ना। तो मतलब ये जो दादी ने ऐसी छोटी छोटी बातें पर बहुत बड़ी बातें, और ड्रामा में मर्यादा क्या होती है, मुझे याद है एक बात तो सुना देता हूं। हम दादी के साथ शाम को, दादी ना वो सूप पीती थी और पनीर खाते, दादी को थोड़ा पनीर देते थे, तो मतलब शाम को दादी मिलने भी जाती थी पार्टी से, तो मैं लगभग रोज ही दादी उन्हीं पर मुझे बुला लेती थी, आप आ जाने दादी को चेक भी कर लेना। तो हम जब बैठते थे तो कोई ना कोई मेरे से पूछ लेता, कभी मोहिनी बहन पूछ लेती, कभी कोई और भाई बहन बैठे होते, कुछ बात पूछते, मैं बात करता और दादी का पूरा हो जाता, और मेरा पनीर और वो होते ना क्या बोलते हैं उसको, सूप और एक होते वो क्या होते हैं चने के
मुरमुरा,
मेरे खत्म नहीं होते थे। तो दादी बैठी रहती थी, मुनि बहन कहते दादी चलो ना, इतने लोग बैठे, इतने को टोली बांटनी, को मिलना है आपको, जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाए ना दादी वहां से उठती नहीं थी। तो मैं देखता हूं इतनी बड़ी दादी, हम तो छोटे बच्चे है ना, मतलब ये होती है मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, कि छोटों के लिए भी इतनी मर्यादा, इतना रिगार्ड, क्या होता है रिगार्ड, है ना, किसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, किसको कहते हैं धैर्यता की मूरत। दादी सिखाती थी कि अगर पेशेंस रखोगे तो कभी पेशेंट नहीं बनोगे, है ना, ये वर्ड दादी का निकाला हुआ है, पेशेंस और पेशेंट शब्द पेशेंस से आया है, जो आदमी पेशेंस लूज करता है वो पेशेंट बनता है। तो ये जो सचमुच में ये देखो तो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का कारण, एसिडिटी का कारण जल्दीबाजी है। तो धीरे जितना सीख जाओ तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं, है ना, बीमारी या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, मन में धीरज। फिर एक चीज और दादी ने भी सिखाई, लास्ट में बता देता हूं, तो के व्यवहार, आप दूसरों से तो बहुत मीठा व्यवहार कर लेते हो, अपने साथ आपका व्यवहार कैसा है। ये जंभीरी तब मेरे को, मुझे हार्ट की बीमारी तब की बात है, दादी कहती है आप सबसे तो मुझे पता है कि आपका कोई कंप्लेन नहीं है ना अस्पताल में ना यहां पे, कि तू अपने साथ कैसे रहते हो। मैंने कहा दादी अपने साथ कैसे रहते हैं, जैसे रहते हैं ठीक रहते हैं, पर अपने साथ अपने आप को प्रेशर क्यों डालते हो, ये क्यों करते हो। मैं बाला बहन से पूछती थी दादी ना, तो वो कहती नहीं गुप्ता जी, वो बाला बहन कभी कह देते जल्दी जल्दी करते, तो नहीं, नहीं अपने साथ प्रेशर नहीं डालो, इजी रहो, शांति प्यार अपने आप को पहले दो। तुम्हारे हार्ट को कौन शांति देगा, कौन प्यार देगा? अपने शरीर को शांति प्यार खुशी दो, कौन देगा? आपको देनी है। बाबा से लेके अपने इसको दो, शरीर को दो, मन को दो, तब उसे कहते हैं तंदुरुस्त, मन दुरुस्त, है ना। तो दादी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें सिखाई जो मैं समझता हूं शायद मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। ये जन्म तो कई जन्म नहीं भूल सकता,
भूलेंगे तो हमें याद दिलाए,
कई जन्म नहीं भूल सकता।
थैंक यू भाई साहब बहुत, ये तो पूरा दिन ही बीत जाएगा अगर हम करें तो। अंतिम समापन भाई साहब कुछ आप, अंतिम समाप्ति आप करें कुछ
क्वेश्चन
नहीं, आप जो भी आपको अभी लास्ट में आपको जो प्रेरणा है।
ओम शांति। समय को देख करके हम लोग भट्टी में आए हैं, बाबा के पास आए हैं। सारी विश्व की नजर किसके ऊपर है? हम बच्चों के ऊपर है। पहले विश्व की नजर किसके ऊपर होती थी? बाबा के, साकार बाबा थे, बाबा बैठा है। उसके बाद दादियों के ऊपर, अभी दादियां भी नहीं रही तो किसके ऊपर विश्व की नजर है? हम बच्चों के ऊपर नजर है। तो हम लोगों को ऐसा कर्म करना है, ऐसा पार्ट प्ले करना है कि लोग कहें कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, उनको साधारणता नहीं दिखाई दे। खाते पीते चलते उठते बैठते अटेंशन देना है। वो टाइम पूरा हो गया, दिन पूरे हो गए, अब है प्रत्यक्षता का समय। बाबा, हमारी दादियां वतन से हम सबके ऊपर आस रखा है, तो उनकी आस हम कब पूरा करेंगे? क्या ऐसे ही पूरा करेंगे? ऐसे तो बहुत भट्टियां हम करते आए हैं, कर रहे हैं, ये भी भट्टी पूरी हो जाएगी, घर जाएंगे, लेकिन नहीं, पूरा अटेंशन। भट्टी पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हुई, स्टार्ट कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म को देख करके बाबा खुश है, खुश होगा, अपने आप से बातें करें। आज तक हम लोगों ने भगवान के ऊपर आस रखा था द्वापर से, अब भगवान हमारे ऊपर आस रखा है, ये मेरे बच्चे फरिश्ता बने, देवता बने, कब भगवान की आस पूरा करेंगे? हम एकांत में अपने आप से बातें करें, हे मेरे मन, क्या इसी पुरुषार्थ से भगवान की आस पूरा करेंगे? क्या फरिश्ता इसी पुरुषार्थ से बनेंगे? हमने देखा है फरिश्ता बनने के लिए हमारी दादियों ने कितना मेहनत किया है, बाबा ने कितना मेहनत किया है, मम्मा ने कितना मेहनत किया है, बीमार वो भी हुए, दादियां भी बीमार हुई, बाबा भी बीमार हुए, मम्मा भी बीमार हुई, हिसाब किताब सबको चुकतु करनी पड़ी। आज हम भी बीमार होते हैं, हिसाब किताब चुकतु हम सबको करना है। 84 जन्म से हम चक्कर लगाकर आए हैं, पता नहीं किस जन्म में कहां क्या हिसाब बना करके आए हैं, उस समय तो पता नहीं लगा, लेकिन अब फाइनल हम जा रहे हैं तो दे करके जाएंगे ना, चुकतु करके जाएंगे ना, या लेके चलेंगे, चलो स्वर्ग में लौटा देंगे, भाई तुम्हारे से जो कुछ ये है स्वर्ग में हम दे देंगे, नहीं, वहां तो घुस ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं, क्लीन होकर के जाना है। तो जब क्लीन होकर के जाना है तो कोई भी हिसाब किताब चलते चलते हो गया हाय ये नहीं कहना है, ये क्या हो गया, बाबा को हमने इतना मदद किया है, इतना हमने बाबा को सब कुछ तन मन धन से सेवा किया है, क्या बाबा मेरी ये छोटी सी संभाल नहीं कर सकता है, ये छोटी सी बीमारी नहीं दूर कर सकता है। कभी भी बाबा के ऊपर संशय नहीं, ना मात्र भी बाबा के ऊपर क्वेश्चन नहीं, इतना प्यार, इतना अटेंशन हमारी दादियों को हमने देखा, बहुत नजदीक से देखा। दादी गुलजार बीमार थे लेकिन उनके चेहरे से नहीं लगा कि वो बीमार हैं। इतना उनका अपने ऊपर अटेंशन, इतना बीमारी क्या है उनको ये पता भी नहीं था जो हम बीमार भी हैं। दादी कभी वर्णन नहीं किया कि ये बीमारी है, मुझे ये बीमार है, मुझे सिर दर्द है, कमर दर्द है, पांव में दर्द है, नहीं। डॉक्टर लोग पढ़ करके फिर वो रीडिंग करते थे, दवाई लिखते थे। इसलिए डॉक्टरों का कहना था कि बनारसी भाई आपके दादियों के, आपके भाई बहनों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई, दादियां तंग करती है, हमारे भाई बहने तंग करते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाएं तो इजी है दवाई देना, ये तो मुस्कुराते रहते हैं, इतनी भयंकर इतनी बड़ी बीमारी है चेहरे से नहीं लगता है। उन्होंने भी तो ये किया, सहन करते हैं, हो जाएगा, बाबा बैठा है ना, बाबा ठीक करेगा, धीरज रखो, शांत रखो, हो जाएगा। कभी भी ये नहीं, दादी एक बार की बात है, गुलजार दादी बैठी थी, मैं वहां गाम देवी में गया, मैं भी दादी के पास नजदीक जाकर के बैठ गया, दादी के थोड़ा ध्यान नीचे आया तो मैं दादी से पूछा, दादी आप को कोई तकलीफ है? दादी ने कहा कि नहीं। आपको बताया क्या कि मुझे सिर दर्द है, कमर दर्द है, पेट में दर्द है? नहीं। आप इतनी गहरी मुद्रा में हैं। अब तो मैं ये सोच रही हूं कि सारे संसार में लोग कितना दुखी हैं, कितना बीमार हैं, इनको कष्ट से निवारण कैसे हो। पूर्वज दादी जानकी बीमार है लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं बीमार हूं, नहीं। अभी देखो हंसा बहन, दादी क्या कर रही है, दादी सोई है, तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आई है, और 7 बजे शाम को 6 बजे हम चक्कर लगा के कॉटेज से आ रहा हूं, 7 बजे स्टेज पर योग करा रही है। दूसरों के लिए जीवन है तो हम ब्राह्मणों का जीवन किसके लिए है? सेवा के लिए है, दूसरों के लिए है। एक हमारी दादी, उसका जीभ को कैंसर हुआ, उसको बॉम्बे ले गए ऑपरेशन कराना, कराने के लिए उसको एडमिट किया, कल ऑपरेशन होने वाला है, कल सुबह मुझे बुलाती है, बोलती है कि भाई मेरे रूम में आप आएंगे? जी दादी मैं आता हूं। उनके रूम में गया तो ये नहीं कहती है कि मैं बचपन से आई हूं, सब तन मन धन लेकर आई, सब कुछ बाबा को स्वाहा किया, बाबा मेरी एक छोटी सी बीमारी मदद अंत समय नहीं किया, ये नहीं कहा। वो क्या कहती है? कहती है कि भाई ये जीभ कट जाएगा, मैं मुरली पढ़ सकती हूं या नहीं पढ़ सकती हूं पता नहीं है, अभी मैं मुरली तो पढ़ सकती हूं, मुझे मुरली क्लास में ले चलो, मैं मुरली पढ़ करके सुनाऊं, फिर मेरे को थिएटर में ले जाना और मेरी जीभ भले कटे कोई हर्जा नहीं है, बाबा को दोष नहीं। आज कोई भी तकलीफ होता है हम लोग बाबा को दोष देते हैं, बाबा सबको मदद करता है, मेरे को मदद नहीं करता है। नहीं, बाबा सबको मदद करता है, दाता है ना, उसको तो कभी नहीं, उसके डिक्शनरी में है कि चार लोगों को नहीं मदद करेगा बाकी 96 लोगों को मदद करेगा, नहीं, दाता है, सबको मदद करता है। तो हम भी सब में, हम भी तो हैं, तो हमको भी मदद करेगा, उस पर विश्वास श्रद्धा अटूट निश्चय रखें, बाबा करण करावन हार करा रहा है, वही इसमें हमारा कल्याण है, इसलिए बीमारी आई है, मेरा पेपर है, पेपर में मुझे पास होना है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, एकदम अटूट निश्चय। लोग देखें आश्चर्य में रहें, अरे इनको इतना बीमारी है लेकिन इनके चेहरे देखो, कितना चेहरे पर रौनक है, कितना दिव्यता है, कितनी पावर है, वो स्टेज अब हम लोगों को होनी चाहिए, कौन दिखाएगा?
जरूर सभी दिखाएंगे भाई साहब, ये सबका संकल्प है ना, दिखाएंगे ना आप करके, हाँ जी, हाथ उठाओ, आधे लोग उठा रहे हो,
तो वो काम हम लोगों को करना है, चाहे घर में हो, कहां भी हो, परिवार में हो, घर में भी इतनी तपस्या करना है बाबा को, अरे ये संगम के थोड़ी घड़ियां बाबा हमारे साथ बंधा हुआ है, जहां चाहो वहां बुला लो, रास्ते जा रहे हैं बाबा को बुला ले, बाबा मेरे साथ चलो, भोजन बना रहे हैं वहां बुला ले, बाबा मैं अकेले भोजन बना रही हूं, आप भी आ जाओ, उनसे बातें करते रहो, भोजन बनाए हैं, भोग रखे हैं, बाबा मैं वतन में नहीं आऊंगी, आप मेरे घर में आओ, यहां भोजन मैं कराऊंगी, हुज्जत, इतना प्यार, कब दीवाने हो जाए। अरे जिनको भगवान नहीं मिला वो दीवाने हो गए, केवल साक्षात्कार हुआ, केवल लाइट दिखाई दिया, नारद को लाइट दिखाई दिया, मीरा को लाइट दिखाई दिया, भक्तों को लाइट दिखाई दिया, दीवाने हो गए, और हमको बाबा पालना दे रहा है, अनुभूति करा रहा है, और छोटी छोटी बातों में मेरी स्थिति क्या है, सोचो। तो अंतिम समय का पुरुषार्थ है, किसी को देखना नहीं है, अपने पुरुषार्थ में मगन रहना है, संतुष्ट रहना है, मेरे भाग्य जैसा संसार में किसी का भाग्य नहीं है, क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता मेरा है। हम इतना निश्चिंत रहें, इतना हम संतुष्ट रहें, इतना अपने ऊपर अटेंशन दें, कभी अलबेलापन का समय चला गया, हर क्षण हर घड़ी भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कहां बाबा अंत में अटेंशन दिया था, स्नान कर रहा है, बाबा को बुला रहा है, बाबा 2500 वर्ष हमने लोटी चढ़ाई है, अभी ये शरीर पर लोटी आप चढ़ाओ, आप लोटी डालो, आप स्नान कराओ, योग हमेशा योग कैसे करें, ये योग है। सब्जी काट रहे हैं, बाबा मैं अकेले सब्जी काट रही हूं, आप आओ, आप भी सब्जी काटो, मेरे साथ बैठो, मैं रू रिहान करूं। जिस घर में 10 बार भगवान आएगा, वो घर मंदिर होगा या नहीं, वो आश्रम होगा या नहीं,
थैंक यू, हर कार्य में बाबा को आह्वान करके बहुत सुंदर।
तो एकदम मधुबन से जा रहे हैं, ज्ञान सरोवर से जा रहे हैं, एंजेल बन करके जाना है,
थैंक यू,
बन रहा हूं नहीं, बन रही हूं नहीं, एंजेल हूं, इतनी जवाबदारी रखेंगे तो गलती नहीं होगी, और नहीं तो क्या होगा, गलती करते रहेंगे, भाई अभी तो हम एंजेल बन रहे हैं ना, बने थोड़ी हैं।
जी, थैंक यू,
ओके, पूरा करते ही इशारा हो गया
भाई साहब, सुनने की तो बहुत समय का थोड़ा सा बस, पर अगली बार ये एपिसोड चलता रहेगा, इससे पहले भी पहला एपिसोड हुआ, ये दूसरा अभी ऐसा चलता रहेगा, आप सबके तो ढेर अनुभव है, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, बस एक मिनट साइलेंस।